السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أحله، وصل على محمد كما أنت أحله، وافعل بنا ما أنت أحله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک صاحب نے مجھے 98 میں غالباً وہ تسبیح خانے سے ان کی نسبت ہوئی، بیت کی نسبت ہوئی، وہ جب بھی ملتے تھے ایک لفظ کہتے تھے، دعا نگاہ، دعا فرمائیں نگاہ فرمائیں، جب بھی ملتے تھے ایک بات کہتے تھے، دعا فرمائیں نگاہ فرمائیں. میں اس بندے کی وسعت اور گہرائی پہ حیران ہوتا تھا کہ اس کو دعا پہ کتنا یقین ہے اور نگاہ پہ کتنا یقین ہے، دعا پہ کتنا یقین ہے اور نگاہ پہ کتنا یقین ہے. اللہ والوں سے اس کے تجربے دیکھے، اولیاء، صلحاء، آل رسول، اصحاب رسول سے اس کے واقعات سنے دیکھے، لیکن مجھے جو سمجھ آئی وہ بچوں سے آئی، مجھے جو سمجھ آئی بچوں سے آئی. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میں ان کو کھلا رہا ہوتا تھا، بہلا رہا ہوتا تھا، محبت کر رہا ہوتا تھا. ساری چیزیں تھیر میں بھول کے کہتے تھے، امی جانا ہے، اماں. میں اماں بننے کی بڑی کوشش کرتا تھا پر اماں نہیں بن سکتا تھا. اچھا، تھوڑی دیر میں اماں کو ایسے دیکھ لیتے تھے، پھر وہ میرے، اور اماں نظر نہ آئی، انہوں نے کہا تو کون؟ انہوں نے کہا بھائی میں کہہ اگر کہتا کہ بھی میں تمہارا باپ ہوں، انہوں نے کہا ہوگا، ہمیں اماں دکھاؤ. کیوں؟ اماں کی نگاہ، بس نظر، اماں کی نظر، بس وہ نظر سے نظر ملتی تھی، اور جامع الفت پیا جاتا تھا، دل کا مٹکا بھر جاتا تھا، اطمینان اور تسلی آ جاتی تھی، پھر کھیلنے لگ جاتے تھے، پھر تیرے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں ماں غائب ہوئی تو کہتے ہیں اماں ملوا. بڑے عرصے کے بعد جب بلوغت ہوتی ہے، پھر شریعت کہتی ہے، پھر اس کو ماں اور باپ کی توجہ کم، دوستوں اور باہر کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. پھر ماں باپ بلاتے رہتے ہیں، بیٹا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں ہاں میں نے فلاں کام کرنا ہے. وہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، چار مراحل زندگی نے قرآن نے بیان کیا ہے. ماں کی دعا تو تھی پر نگاہ بھی چاہیے تھی. دعا تو تھی پر نگاہ بھی چاہیے تھی. اور بچہ کہتا ہے کہ مجھے اماں تیری دعائیں نظر نہیں آتی، وہ دل سے نکلیں، ہونٹ ہلے، زبان ہلے، حتیٰ کہ تیری دعاؤں سے عرش ہل جائے، اور مجھے تو نگاہ چاہیے. ایک عمر ہوتی ہے جس میں نگاہ اشد ضروری ہے، اور دعا بعد میں احساس ہوتا ہے کہ دعا بھی ضروری ہے، لیکن پہلی نظر، عمر کا پہلا حصہ، اس پہ صرف نگاہ چاہیے، ماں کی نظر چاہیے. اور ماں کا اور بچے کا رشتہ کتنا قریب ہوتا ہے، اور ماں کا اور بچے کا رشتہ کیسا حیرت انگیز ہوتا ہے. मैं एक दफा हमारे पड़ोस में अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, छोटा सा बच्चा, जो बच्चा होता है ना वो राखवा लेला होता है, वो साथ चलता है। तो मैं गया ना तो एक खातून आई, बैठी, थोड़ी देर बातें की, एकदम कहने लगी मेरा बच्चा उठ गया है, उसको भूख लगी है, वो रो रहा है। मुझे ये पहली दफा जिंदगी में ये वाकया देखने में आया, उसके बाद तो बेशुमार। मुझे समझ ना आई कि इस मां का बच्चे के साथ क्या मोबाइल का तारों का रابطہ है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या है। याद रखिएगा, जब निगाहें शराबे इश्क पीती हैं, निगाहें शराबे इश्क पीती हैं, तो फिर निगाहों से अगर निगाहें न मिलें तो बेचैनी, बेकली, बेकरारी हो जाती है। एक साहब ना गली में, एक नौजवान, जवान था, 25-26 साल का, उसको लेके दो बंदे खड़े हुए थे, मुझसे कहने लगे अल्लाह के वास्ते बस सिर्फ इसको देख के ना इसको तसल्ली दे दें, हमारा खर्चा बच जाएगा। उनकी कैफियत ऐसी थी, मेरी मजबूरी है, मैं गलियों में जगह जगह लोग मिलने की कोशिश करते हैं, मसाइल हालात पूछने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं ठहर सकता, मजबूरी है या मगरूरी है, मेरे और अल्लाह का मामला है। मैं ठहर गया, उसे कहने लगे इसने कई अरसे से आपको नहीं देखा, फिर ये बीमार हो जाता है, आप देख लें और ये आपको देख ले, बस ये ठीक हो जाता है। उसके हाथ पे वो ड्रिप लगने की वो टेपें वगैरह सुइयां सारी लगी हुई थी, और जैसे उसको ना अस्पताल से पकड़ के खींच के लाए। मैं सोचने लगा मेरी क्या औकात, मेरी हैसियत, मुझे इसलिए देखता है कि मेरी निस्बत बड़ों के साथ है, जिन निस्बतों की वजह से मुझे देखता है उन निस्बतों की निगाह में क्या तासीर होगी, उन निस्बतों की निस्बतों में क्या ताकत होगी। मेरी निस्बतें हैं सिर्फ, मेरी निस्बतें हैं, अल्लाह वालों की तरफ से मुझे खिलाफतें और निस्बतें हैं, ठीक 25 अल्लाह वालों से मुझे खिलाफतें हैं। मैं कहता हूं उन निस्बतों की वजह से, निस्बतों की वजह से, निस्बतों की वजह से। हमारे एक साहब हैं, आते हैं तस्बीखाने में, पोते पोतियों वाले, नवासे नवासियों वाले, उनकी बूढ़ी बीवी किसी कोने में खड़ी होके वो कहते जी बस आप कहते हैं ना कि भाई ख्वातीन रास्ते में खड़ी ना हो, बंदे धक्के देते हैं, औरतें और मर्द एकदम जमा ना हो, मतलब यही है। इसलिए हमारी ख्वातीन के आने की गलियां और हैं, मर्दों के आने के रास्ते और हैं। कहते जी वो एक निगाह देख लेती है, वरना बीमार हो जाती है और महीनों हफ्तों बिस्तर पे पड़ी रहती है। याद रखिएगा, इसमें मेरी कोई करामत नहीं है, उन निस्बतों की करामत है जो मेरे साथ हैं, उन निस्बतों की करामत है। खुद सोचें कि फिर वो जो माई आई, कहीं लगा आईना रसूल अल्लाह, आईना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें क्या उनका तो विसाल हो गया। आयशा सिद्दीका से अर्ज किया, फिर हुजरा खोला और हजूर के कब्र अतर पे सर रख के वहीं जान दे। जिनकी निगाहें मिली थी और जिन्होंने निगाहों से पिया था, उनकी ये बेताबियां हैं। बिलाल रजी अल्लाह तआला ने हुजूर के विसाल के बाद को वतन मुल्क छोड़ गए। मैं कहता था अशहदु अन्ना मोहम्मद, जब कहता था इधर देखता था या इधर देखता था, कहीं तो मेरे कमली वाले पे मेरी नजर पड़ जाती थी, अब वो ही नहीं है। और जब आए तो मदीना वालों ने सोचा किसी की नहीं मानेंगे, हसनैन करीमैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन, शहजादों को कि आप अगर फरमाएंगे तो आपकी बात नहीं टालेंगे, उन्हें पता है ये कौन हस्तियां हैं। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बात न टाल सके, और मदीना की एक खातून थी उसकी छत पे चढ़ के मेरे बिलाल अजान दिया करते थे। वो छत पे जब चढ़े ना तो मदीना की गलियों में कोहराम मच गया, लेकिन वो अजान पूरी ना कर सके, उन्हें वो हस्ती नजर ना आई जिनकी दो चीजें उनके साथ थीं, दुआएं और निगाहें। दुआएं थी पर निगाहें नहीं थी। निगाह 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 का सफर मां से शुरू होता है, उस्ताद की तरफ आता है। हमारे उस्ताद एक काम करते थे, ऐसे ना अखबार ले लेते थे, अखबार ऐसे लेके ना उसके दरमियान में सुराख कर लेते थे। अब छठी सातवीं आठवीं की पत्नी से बात है, उस सुराख देख रहे होते थे और बच्चे समझते थे कि शायद उस्ताद जी रहीम शाह साहब होते थे, खुस्सा पहनते थे, फिर उनके खुस्से का निशाना भी, जूते का निशाना भी लाजवाब होता था, ठा करके उसका एक लफ्ज कहते थे, तेरे कुफर को लगे रगड़ा, तेरे कुफर को लगे रगड़ा। उनका एक ये उनकी गाली भी थी, सब कुछ था, डांट भी यही थी सब कुछ, तेरे कुफर को लगे रगड़ा, तू समझता मैं अखबार पढ़ा। और उस्ताद की जब निगाह होती थी फिर सारे इंसान के बच्चे होते थे। सॉरी, हमारी जिंदगी में निगाहों का बड़ा ताल्लुक है, निगाहों का बड़ा ताल्लुक है। मैं हजरत अली करम अल्लाह वजह के मजार पे बैठता था और मैं अर्ज करता था, आका मैं आपकी नजर में हूं, बादस विसाल, फरमाया बादस विसाल, हमारे अकाबिर का अकीदा है बादस विसाल, हम जो पढ़ते हैं अहले कबर वो सुनते हैं, हम जो दरख्वास्त करते हैं अहले कबर वो सुनते हैं, हत्ता के यहां तक के अहले मजार दुआ फरमाते हैं, और उनको लिए उनको दुआओं के लिए कहना भूल न जाना कि ये शिर्क है, ये गुनाह है या कुफर है, नहीं, उनको दुआओं के लिए अर्ज करना। मैं हजरत गौसल आजम पीरानी वीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह की उस वक्त सफाई हो रही थी, मजार का दरवाजा बंद था, मैं कुछ अहबाब हम बाहर बैठे बरामदे में, तो मैंने अर्ज किया, मैं कह शेख ये दीवारें तो हमारे दरमियान कहां हायल हैं, मैं तो लाहौर के तस्बीखाने के मिंबर पे बैठ कर भी आपकी निगाह मेरे ऊपर है, आपकी दुआ मेरे ऊपर है। निगाह दुआ, एक वक्त आता है, एक वक्त जब तसव्वुर शेख की जरूरत होती है। वाकया बता रहा हूं, करने की कोशिश ना करना। अलिफ बे का कायदा पढ़ने वाला एमएससी की पीएचडी की किताब उठा के पढ़े, कुछ समझ आएगी? कहां आएगी? अरे वो क्वेटा के हैं रहमतुल्लाह साहब, तो वो अनपढ़ हैं, फजाइल आमाल की किताब की तालीम सन 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 के हदीसें याद हो गई हैं, वहां तालीम करा रहे थे, किताब उल्टी पकड़ी हुई थी और हदीस पूरी पढ़ रहे थे। उसने कहा भाई रहमतुल्लाह किताब उल्टी पकड़ी हुई है, थे तो अनपढ़, उल्टी है या सीधी? कहा मैंने उल्टी पढ़ने की मश्क की हुई है, थे तो अनपढ़, बुढ़े हो गए हैं बाबा जी, कहने मैंने उल्टी पकड़ने की मश्क की हुई है। क्या बात कर रहा था? एक बात बता रहा हूं, पता नहीं आज मजमून क्यों ऐसे आचे आते देर पे आया, दिल पे आया, एक बात बता रहा हूं, अलबे के कायदे में یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے اس قاعدے پہ لگ جائیں. ایک بات یاد رکھیے گا، معالج جس چیز سے روکے رک جانا علاج، معالج جس چیز کا حکم دے کر لینا علاج، اور اگر جس چیز سے روکے وہ کر لیں اور پھر نقصان ہو تو حدیث میں الفاظ یہاں تک آئے محدثین نے، لکھ لینا یہ میری بات کو، معالج نے ایک چیز سے روکا ٹھیک، اور مریض نے وہ چیز کر لی اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، قیامت کے اندر اللہ کے ہاں جواب دے گا اس بات کا کہ تو نے معالج کی بات کیوں نہیں مانی تھی، جواب دہی ہوگی، جواب دہی ہوگی. اس طرح روحانی معالج بھی. ہمارے پڑوسی تھے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر ملک یحییٰ کمبو تھے، ملک کہلواتے تھے، پرانے ارائی اور کمبو ملک کہلواتے تھے، اب بھی پرانے ارائی بھی اور کمبو بھی. تو کنگ ایڈورڈ کے مجھ سے کہنے لگے، میں 1954 کا کنگ ایڈورڈ میں نے ایم بی بی ایس کی تھی لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، اور اس دور میں وہ معالج تھے جس دور میں شہر میں ایک دو ڈاکٹر ہوتے تھے، بہت کنگ تھے اپنے فن کے، باکمال تھے. خان حبیب اللہ خان، خان بہادر، انگریز نے انہیں بہت بڑا لقب دیا تھا خان بہادر کا، بڑے جاگیردار تھے. ان کو کندھے میں درد ہوا بہت زیادہ، بڑا علاج کیا، بہت زیادہ علاج کیا، بہت علاج کیا. ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی، گولیاں دی، مالش دی، یہ دیا وہ دیا، کچھ فائدہ نہ ہو، درد بڑھ گیا. تھے بوڑھے خان بہادر، خان حبیب الرحمن خان رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، بوڑھے تھے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے درد برداشت نہیں ہوتا. یہ خان حبیب الرحمن بھی ہمارے پڑوسی تھے، ڈاکٹر صاحب بھی پڑوسی تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کندھے کی ہڈی کے اندر موٹی سوئی کا ٹیکا لگے گا جو اچھے سے اچھا بہادر پہلوان بھی برداشت نہیں کر سکتا، آخری علاج وہی ہے، پین کلر، درد کو ختم کرنے والا، تو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اس نے کہا جی میں تھوڑا سا درد تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن یہ روز کا پل پل کا درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو فرمایا ٹھیک ہے. اب ٹیکہ لگایا، انہوں نے کوئی تصور باندھا اور درد بھی نہ ہوا، درد بھی نہ ہوا. اور وہ ڈاکٹر صاحب حیران ہوئے. چند دنوں کے بعد مرشد کا خط ملا کہ میں نے تو آپ کو فلاں وقت میں مراقبے کی اجازت دی تھی اور آپ نے فلاں وقت مراقبہ کیا تھا اور میرے کندھے میں سوئی کی چبھن محسوس ہوئی تھی. میرے کندھے میں سوئی کی چبھن محسوس ہوئی تھی. اب یہ خط لیے روتے، خط لیے روتے، ایک درویش تھے مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس آئے کہ یہ معاملہ ہے کہ میں نے مرشد سے کی اصل میں تصور شیخ کیا تھا اور جس چیز سے میں آپ کو روک رہا ہوں، مرشد کی نگاہ اور دعا کو اتنا اندر جذب کیا، اتنا جذب کیا کہ مرشد کندیاں میں رہتے تھے خواجہ خواجگان، اور یہ بہاول پور میں رہتے تھے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور سوئی کی چبھن وہاں محسوس ہو رہی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جی آپ کا آپریشن کرنا ہے. فرمایا جب میں بیان کرنے بیٹھوں پھر کر لینا، بیان کرنے بیٹھے جسم کاٹ ڈالا، کوئی انستیزیا نہیں، کوئی سن نہیں کیا،
उसके बाद फौरन फरमाने लगे हो गया। उन्होंने कहा जी वो कब का हो कि हमने जो है फोड़े का वो पट्टी भी कर दी। मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह शुगर से गैंग्रीन हो गई। उन्होंने कहा जी जिस्म का ये पांव का ये सारा काटना पड़ेगा। फरमाया अच्छा, ध्यान अल्लाह की तरफ तवज्जो जो गई, जिस्म काट दिया पता ही ना चला। दिल के आईने में है तस्वीर यार, पर ये तस्वीर यार लाने में मुशक्कत भी है ना गवारी भी है। मुशक्कत भी है ना गवारी भी है, और कई मुशक्कत और नागवारी के फासले तय करने पड़ते हैं, और कई मुशक्कत और नागवारी के पहाड़ और समंदर आते हैं, फिर ये दिल के आईने में तस्वीरें यार आती हैं, फिर आती है। कई मुशक्कत और नागवारी के मराहिल तय करने पड़ते हैं। हमें हर पल, अब मैं इसको हदीस से साबित करता हूं, इस निगाह को। एक हदीस है, एला तरफत आइन, अल्फाज इस्तेमाल करूं, कौन सी वो ये दुआ है? हां जी बोलो जी। अला तकिलनी अला नफ्सी तरफत आईन, बोला एक सिर्फ आंख के झिपकने के बराबर भी मुझे अपनी नजर से दूर न करना। ये मसनून हदीस है। आंख का झपकना तरफत आईन, ये देखें मैंने आंख झपका, आप भी झपक रहे हैं, मैं भी झपक रहा हूं गैर इरादी तौर पे। अल्लाह मुझे अपनी रहमत की नजर से एक पल भी, और पल तो पल, आंख के चपकने के पल में भी मुझे अपनी नजर से दूर न फरमाना। क्यों? अगर मैं आपकी नजर से दूर हो गया, बस मेरा कुछ ना बचा, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा सब कुछ लूट जाएगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के हबीब की पूरी ये हदीस है, मसनून दुआ है, दुआ है। हम तो हर पल अपने बड़ों की नजर में रहे, हर सांस अपने बड़ों की नजर में रहे। आपने कभी महसूस किया ना समझ बच्चा हो कि भी नजरों की सख्ती तलखी और प्यार को समझता है, नजरों की जुबान समझता है। ना समझ बच्चा होके भी उसे पता है मेरी मां की नजरें बदली हुई है, ऐसे देख रही है, और उसे पता है मेरी मां की नजर कैसे है। महसूस किया? ना समझ बच्चा होके, ना समझ बच्चा होके वो नजरों को पढ़ता है, उसके सामने नजरों की कोई हैसियत है। उसे पता है कि नजरों में क्या है, तीर है या फूल है, मोहब्बत है या सख्ती और तलखी है, उसे पता है, उसे इल्म है। हम तो हर पल उनकी नजरों के मोहताज हैं, हम तो हर पल उनकी निगाहों के मोहताज हैं। आज अभी मैं घर से निकला तो मेरे एक मुखलिस साथी मेरे साथ आ रहे थे, ऐसे बात हुई तो मैंने कहा अपने एक बंदे के बारे में, मैंने कहा मैंने उनको रोक दिया है कि मेरे पास ना आया कर, और उसके कहा है मैंने उसे अपने आप को बचा सकता है तो बचा, वरना मेरी रूहानी नजर में तेरा वर्का फट गया है, रिवर्स गियर लग गया है, लिहाजा मैंने उसको रोक दिया कि मेरे पास ना आया कर। क्यों? अब वो थोड़ी सी खिदमत करके ज्यादा जताता था, थोड़ी सी अगर खिदमत, खिदमत से मुराद नहीं पैसों वाली, पैसों वाली खिदमत नहीं है, माजरत चाहता हूं। कोई छोटा सा अगर उसने गिलास भर के दे दिया, पानी भर के दे दिया, या कागज उठाया यूं कर दिया, वो कहता था मेरी पहले सवा घंटा बैठ के, एक घंटा 33 मिनट बैठ के पहले मेरी तारीफ करो और जताओ मुझे और मैं आपको बताऊं। और वो इस मरहले में आ गया था। और भी कई मराहिल हैं, शक वसाविस बदगुमानियां, मैं कभी ना आया कर तू। मैं आ रहा था और उसके बारे में मेरे जहन में आ रहा था, मैं कह नजरों से चला गया, नजरों से चला गया, नजरों से चला गया। और नजरों से मुराद मैं नहीं, बात फिर वजाहत कर रहा हूं, जिनके साथ मेरी निस्बतें हैं, जिनके साथ मेरी निस्बतें हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? लाहौर से हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का फासला 4.5 घंटे जहाज का है, पैदल का, घोड़े का, जिस दौर में था क्या फासला होगा। लाहौर से जहाज का 4.5 घंटे लेता है लाहौर से जहाज। लेकिन याद रखिएगा, ये रूहानी तवज्जुहात, ये रूहानी नजरें, इनका ताल्लुक 4.5 मिनट क्या 4.5 सेकंड भी नहीं होता। चलो ये बताएं, साइंस क्या कहती है? रोशनी की रफ्तार साइंस कहती है 86,000 मील फी सेकंड है। ऐसे 1,86,000, भूल गया मैं, लाख पूरा खा गया, 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर बनाए तो वो तो ज्यादा बनते हैं, मील फी सेकंड है रोशनी की रफ्तार। और जिसको वो रोशनी कहते हैं उसको हम नूर कहते हैं, जिसको वो रोशनी कहते हैं उसको हम नूर कहते हैं, उसको हम नूर कहते हैं, उसको हम नूर कहते हैं। कब्रें ठंडी होती हैं इन्हीं रोशनियों से। क्यामत का दिन यही रोशनी होगी जो पुले सरात पे नजर आएगी और बंदा कट के नहीं गिरेगा। और क्यामत के दिन यही रोशनी होगी जिससे जिंदगी की बहारें आएंगी। और क्यामत के दिन यही रोशनी होगी जिससे तराजू तुल जाएंगे और झुक जाएंगे। और क्यामत के दिन यही रोशनी होगी जिससे जन्नत के दरवाजे नजर आएंगे। और क्यामत के दिन यही रोशनी होगी जो नामा आमाल को दाएं हाथ पे आता दिखाएगी। हा ओ मुकरा किताबिया। और जब दाएं नामा आमाल दाएं हाथ पे आएगा तो बंदा एकदम नारा लगाएगा, यही रोशनी होगी, यही रोशनी होगी, ये रोशनी है। और कब्र में यही रोशनी होगी, जुल्मत और अंधेरे में यही रोशनी होगी। और हमारी आंखों के सामने जो मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, यही रोशनी है। आंखें होती हैं, रोशनी चली जाती है। कहते हैं आंखों से नाबीना है, मैं कहता आंखें तो हैं, कहा आंखें हैं रोशनी नहीं। ये जिंदगी रोशनी, जब हमारे अंदर का नूर खत्म हो जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी, फिर जिंदगी बेनूर हो जाती है और बेहैसियत हो जाती है। जब नूर खत्म हो जाता है फिर जिंदगी बेनूर और बेहैसियत हो जाती है। और जब बंदा नजरों से हट जाता है या नजरों से गिर जाता है फिर वह रोशनी उससे छिन जाती है। हमें दो चीजों की अशद जरूरत है, हमें से मुराद पहले मैं, हमें दो चीजों की अशद जरूरत है, एक निगाह और एक दुआ। मैंने मिसाल बच्चे की दी है, मैंने हदीस बकायदा पढ़ी है, आका का फरमान पढ़ा है, आका का फरमान पढ़ा। मुझे पुरानी बात याद है, पुरानी स्मरण, 6-7-8 साल पहले, बस मैं से आ रहा था कहीं से, मेरे साथ मेरे मुखलिस थे,
मैंने कहा भूख लगी है और भूख खाना भी खाना है किसी गरीब के घर, सफेद पोश। अचानक मेरे ख्याल में एक जगह थी, पानी की टैंकी थी, उसके नीचे वो फैमिली रहती थी। अचानक उनके घर गया, दरवाजा आवाज दी, आ गए। मैंने कहा घर क्या पड़ा है? कहने लगे जी बासी चावल पड़े हैं सफेद और बासी मसूर की दाल है। मैं कहा ले आ। बासी चावल पड़े हैं और बासी मसूर की दाल पड़ी है। मैंने कहा ले आ। हम गलेबन तीन बंदे थे, दो थे, हम दो ने वो चीज खाई और मैंने दुआ की, करीम आका अपने गैब के खजाने से जिन हस्तियों के साथ मेरी निस्बत है, मेरे पास कुछ नहीं है, इनको बरकतों और वसतों और दौलतों के खजाने दे दे। अच्छा, कुदरत का निजाम हुआ, अल्लाह ने जो हाथ पकड़ा, वो एक चीज बेचते थे, कहते थे मेरी 5 किलो चीज महीने में बिक जाती है। एक दफा मुझे कहने लगा कि फलां मुल्क से 5 टन का मुझे ऑर्डर मिला है, 5। अच्छा, वसत और बरकत आती गई आती गई आती गई और निजाम बढ़ता गया। ये प्लॉट ले लिया, ये जमीन ले ली, ये जूं करा लिया, गाड़ियां ले ली, चीजें ले ली, ये ले लिया, करते करते जिंदगी में एक रास्ता ऐसा आया कि शक वसाविस और बदगुमानी ने जगह ली। शक वसाविस और बदगुमानी, और फिर उसकी उसको तस्बीह खाने की नजरें खत्म और तस्बीह खाने की दुआएं खत्म, और पिछले महीने तक मेरी इतला के मुताबिक हर चीज खत्म हो गई है। मैं एक बंदे से कहने लगा, मैंने कहा घर मोबाइल में बैठ के दर्श न सुना कर, इन फुकराओं के मजमे में आके बैठा कर, ये सर मुझे नजर आ रहे हैं। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मेरे पास बरह रास्त ना आया करो, ये बाहर जो मजमा बैठा है इस मजमे में बैठ के आया करो, उस मजमे के अनवारात लेके आया करो, उस मजमे के अनवारात लेके आया करो। ये मजमा जो मेरे सामने बैठा है, सारा जहान तो मेरा इंतजार कर रहा है, हजरत तशरीफ लाएंगे, हजरत तशरीफ लाएंगे, पता नहीं कितने हजरत इस मजमे में हैं जिनको लोग जानते ही नहीं। रब्बा करीम, मेरे रब की बारगाह में उनका क्या मकाम है, उनका क्या मर्तबा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह कश्ती में सफर कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई किराया दो, तो लोग जानते नहीं थे ना निशान को ना मकाम को, लोग इनसे मजाक कर रहे थे, कोई छिलका खा के इन पे फेंक रहे थे, कोई चीज फेंक रहे थे, कोई ऐसे बातें कर रहे थे, कोई तनकीद, कोई इतराज, कोई मजाक। उन्हें पूरे कश्ती में वक्त गुजारने के लिए एक बंदा मिल गया जिसके साथ मजाक करे, तो कश्ती वाला कहने लगा भाई किराया दो, सबने एक एक दिरहम दिया, इन्होंने भी दिया। उसने देखा, उसने कहा चलो मैं भी मजाक कर लो। उन्हें बाबा ये तो खोटा है, अल्लाह का वली हो के खोटे सिक्के देता है। उसने उठा के ना दरिया में फेंक दी और लिया, वो खोटा था। उन्हें कहा बाबा मेरे पास तो था ही वही, मेरे पास तो था ही वही। अब उसे और मजाक सोची, कहने लगा इसको उठा के समंदर में दरिया में फेंक दो। सबने कहा ठीक है, मजाक तो वैसे ही चल रही थी, उस करीम की निगाह में थे, तरफत आई, मौला एक पल के लिए अपनी नजर से मुझे दूर न कीजिएगा। बस कोई वजू नहीं किया, कोई किबला रुख नहीं हुए, कोई सलातुल हाजत नहीं पढ़ी, कोई दुआ नहीं की, ऐसे आसमान की तरफ सिर्फ देखा। क्यों? वो चले इन्हीं सलातुल हाजत से थे। मैंने हजरत जुनेद बगदादी के मजार पे बैठा था, उन्हें एक बात सुना दी थी, आपको भी सुना दूं, इसी में से आई ये वाकया, याद रखिएगा। थोड़ी देर के लिए बैठा, मुर्शिद सिरी सकती हैं, उनके कदमों में जुनेद बगदादी हैं। मैं जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मजार में थोड़ी देर के लिए से बैठा, तो मैंने अर्ज किया, शेख एक वाक्या सुना है, जरा आपको सुना दूं। सुना है कि आप तस्बीह हाथ में लिए जिक्र कर रहे थे, एक बंदे ने कहा, जुनेद वो दौर था जब आप तस्बीह पढ़ते थे और जिस तस्बीह की वजह से इस मकाम तक पहुंचे, अब तो आप आखिरी मकाम पे विलायत के, अब तस्बीह की क्या जरूरत है। फरमाने लगे, जिस तस्बीह की वजह से इस मकामे विलायत को पहुंचा हूं, क्या वो तस्बीह फिर छोड़ दो। मैंने कहा, जुनेद, शेख जुनेद, हजरत जुनेद, दुआ करें मौत तक मेरी तस्बीह ना छूटे। और मैंने कहा, जो मेरे साथ काफला आया है, आंसू के साथ आया है, दुआ फरमाएं मौत तक जैसे आपने तस्बीह नहीं छोड़ी थी, कोई लम्हा ऐसा ना आ जाए कि मुर्शिद कह दे ना आया कर, जा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, और अल्लाह पाक फरमाया जा। इसमें भी एक वाकया, पहला वाकया याद रखना, कहां से छोड़ा था मैंने, मालिक बिन दीनार, मैंने एक हाथ के बंदे के हाथ में ना, पहले रिवाज था, अब भी शायद कहीं होगा, आखिरी डब्बी गोल्ड लीफ की होती थी, हाथ में ऐसे गोल्ड लीफ की डब्बी रखते थे फैशनी मिजाज लोग। एक साहब को मैंने देखा, वो जेबी रुमाल होता है ना, उसको तह करके यूं हाथ पे लपेटते थे, उनका एक खास स्टाइल था, उसका एक उनका एक खास अंदाज था, उस रुमाल के ऊपर डब्बी यूं हाथ में होती थी, और किसी से हाथ मिलाना होता था तो डब्बी बाएं हाथ में रखते थे, हाथ मिला के वापस डब्बी हाथ में रखते थे। मैं जा रहा था ना, मैं बैठा हुआ था एक के तो किताब वाले की दुकान पे, किताबों का शौक था, देख रहा था, को मैं छठी सातवीं में पढ़ता था, मुझे आज भी अल्फाज याद हैं, एक दरवेश वहां बैठे हुए थे, किताब देख के एकदम ना पता नहीं उनकी नजर ऐसे हुटी, आह निकली, हाय अल्लाह बचाना, ये लफ्ज मुझे याद है, तो मुझे वो आह भी दिल पे लगी और ये लफ्ज के अल्लाह बचाना वो भी दिल पे लगा। मैंने पूछा, हजरत क्या बात है भाई, इस बंदे को यहीं पकड़ लो। पीछे से अगर बंदा है तो उसको पांव से पकड़ लिया करो, हम पांव वाले हैं, हाथ से वाले नहीं है कि थप्पड़ मार दे, हम पांव पड़ने वाले लोग हैं। मैंने पूछा, बाबा जी क्या फरमाया कि अल्लाह मुझे बचाना। फरमाया, मैंने इसके हाथ में तस्बीह देखी थी और यह तस्बीह पढ़ता था, जिक्र करता था, फिर इसने एक दुर्वेश थे उनकी तौहीन की और वो पी गए, और मैंने उनके दो मोटे आंसू गिरते देखे और मुझे यकीन हो गया, हाय कुछ हो जाएगा। आज आलम यह है, ये जुमा तो क्या ईद भी नहीं पड़ता, और उसकी रातें गुजरती हैं गफलत की, गफलत की उसकी रातें गुजरती हैं। उसकी नजर में रहे, उसकी शफकत में रहे। मैंने शेख जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से बगदाद में बैठ के दरख्वास्त की थी, ये वाक्या मैंने आपके बारे में सुना है, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरी इस जमात जो मेरे साथ आई है, मुखलिसीन की मस्तूरात और मर्दों की, इनके लिए दुआ फरमाएं कि आखिरी वक्त तक तस्बीह ना छूटे, तस्बीह ना छूटे, तस्बीह ना छूटे। बस किसी की निगाह में गिर ना जाए। निगावेश को मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, निगावेश को मस्ती में, फिर वही अव्वल भी होकर होता है, वही आखिर भी होता है, लेकिन इश्क मस्ती की निगाह में रहे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने फकत देखा था, बस देखा, क्यों, वो इन तस्बीहों के मराहल से ही निकले थे। याद रखिएगा, मरहला यही है, यही तस्बीह, यही वजीफा, यही किसी फकीर की महफिल में जाना, मरहला यही है, मरहला यही है। बस ऐसे देखा तो तो कश्ती के चारों तरफ मछलियां मुंह में दिरहम लेके आ गईं। ऐसे देखा, फरमाया हां मेरा दिरहम ये है। और उस कश्ती वाले मालिक से कहा, बाबा देखो यही दिरहम है। बस उसे समझ आ गई कि लोग मिंबर पे बैठे वाले हकीम तारिक को हजरत कहते हैं, कोई मजमे में बैसे बेहैसियत मालिक बिन दीनार जैसे बैठे होते हैं जिनको कोई लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जिनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, जिनको कोई सलाम का जवाब भी ना दे, पर वो मालिक बिन दीनार होते हैं और वो सिर्फ देखते हैं, बस सिर्फ देखते हैं और अरशी फैसले करवा लेते हैं, सिर्फ देखते हैं, सिर्फ देखते हैं। क्यों? उन्होंने निगाहों से बहुत कुछ पाया हुआ है, उन्होंने निगाहों से बहुत कुछ पाया हुआ है। उन्हें पता है उस करीम की नजर में रहेंगे तो काम होगा, और जब नजर नजर से मिलेगी तो पल में काम हो जाएगा। जब ताल्लुक ज्यादा हो ना, फिर नजरों के इशारों से ताल्लुक जब ज्यादा हो। ये वोट हो रहे थे काउंसलरी के, काउंसल वगैरह मेंबर बनते हैं काउंसलर इलाके के मोहल्ले के, मैं वहां खड़ा था। एक बंदा दूर से वोट डालने आया और आया साइकिल पे, मुझे आज भी मंजर याद है, कोई 40 साल पुरानी कहानी है। वोट डाल के ना अब आके तबसरा कर रहा था, अब तरह तरह तबसरा सुनिए उसका, और मैंने वो तबसरा सुना। कह लगे जब मैं आया ना तो मेरे पास साइकिल था, दूर मेरा दोस्त खड़ा था, मैंने कहा मैं साइकिल पे लगाऊं या कोई और कौमी निशान था, वो मेरे ख्याल में वो कलम दबात था, उस पे लगाऊं। कहा कि मेरे दोस्त ने ना साइकिल के हैंडल का यूं इशारा किया, मैं समझ गया साइकिल पे लगाना है। दूर खड़ा था और साइकिल के हैंडल का यूं इशारा किया, कहा कि मैं मोहर लगा के उसके पास आया। मैंने कहा साइकिल पे मोहर लगाया हूं, कह रहा ठीक समझा। रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। जब निगाहों के पर्दे हटते हैं और निगाहें से मिलती हैं और निगाहों से पीता है बंदा शराब इश्क, शराब मार्फत, तरीकत, तो फिर आंखें ऐसे इशारे करती हैं और इशारों में काम हो जाता है। मालिक बिन दिनार ने ऐसे आंखों का इशारा तो किया था, मौला मेरा करीमा का, तेरा एक आजिज बंदा अब आखिरी आजिजी में है कि अब उठा के समंदर में फेंकने लगे हैं। अब अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे एक पल के अंदर इनको मैं दिखा देता हूं कि मेरे ऐसे बंदे भी हैं इस दुनिया में जिनको लोगों तुम नहीं जानते, पर मेरे यहां उनका बड़ा मकाम है, मेरे यहां उनका बड़ा वकार है और मेरी बारगाह में उनकी बड़ी शान शौकत है। आका की बारगाह में एक शख्स आया, जिब्रील बैठे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शख्स आया ना आपकी बारगाह में, शख्स आया 70 सिपाही में, ये जो शख्स आया आपकी बारगाह में, इसको दुनिया वाले तो शायद बहुत कम जानते हो लेकिन अर्श वाले बहुत ज्यादा जानते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है किताबों में आया, वो था भी बेचारा गुमनाम आदमी था। मेरे आका कमली वाले ने पूछा किस अमल की वजह से, मेरे हुजूर कमली वाले ने पूछा कि किस अमल की वजह से, ये नस्वार ली नहीं, 70 सिपाही लिए, कहेंगे नस्वार ली, मजमे के सामने थोड़ा सा काम भी बड़े अजीबोगरीब कहानियां चल पड़ती हैं, फिर हर बंदा अपने सोच से सोचते हैं। तो अल्लाह किस अमल की वजह से, फरमाया सूरत इखलास से मोहब्बत करता, सूरत कुल हवल्ला से मोहब्बत करता है। सूरत कुल हवल्ला पढ़ता है और सूरत कुल हवल्ला के इस अमल की वजह से अर्शों में हम फरिश्ते जमीन वालों से खुद ज्यादा जानते हैं। इसको जमीन वालों के यहां इसका तारुफ थोड़ा है, अर्श वालों के यहां इसका तारुफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं निकला ऐसे दिन के तकरीबन 10 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब। अक्सर वहां हरम खाली होता है, लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं, तवाफ करते हैं, फिर इशराक चाश्त वगैरह पढ़ के फिर जाके नाश्ता और सो जाते हैं। फिर 11:30 बजे के करीब फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं। 11 बजे के तकरीबन एक दरवेश बैठे थे, तौलिया का एहराम था, तौलिया एक बांधा हुआ था, दूसरा तौलिया उतार के यूं लपेट के कोहनी पे दिया हुआ था, शापर था, उसमें दही का पानी था और एक रोटी थी। अरब में रोटी होती उसको तमीज कहते हैं, इतनी बड़ी रोटी थी। रोटियों के नाम है, फतूत है, हब है, शईर है, रोटियों के नाम है वहां, काकई है, काकई रोटी है, हजरत ख्वाजा बख्त कुतुबुद्दीन बख्तियार काकई, हम उन्हें काकी कहते हैं, हालांकि वो काकई काकई कबीला है, आईन आता है अरब का। रोटी खा रहे थे, मुझे आज भी उनका एहसास है कि उनकी नजरें मेरी नजरों से मिली हैं, बस बरस बर एक बिजली से पहले कूंदी, बस एक बिजली से पहले कूंदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है। मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है, जिगर नहीं है, बस एक बिजली से पहले कूंदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है। मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है, जिगर नहीं है। मैंने कहा, मेरे एक साथी थे वहां अली, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा, उनकी मरहूम वालदा थी, हमशीरा थी, बीवी भी थी गालिबन, मैंने कहा कि कहां हो, कहा मैं फला होटल में हूं, मैं कह मैं भी वहां हूं, आ जाओ। सच्ची बात पूछें, मैं थोड़ी सी अरबी के 2-4 लफ्ज बोल सकता हूं और थोड़ी सी समझ सकता हूं। उस दिन हमें करबला में हम एक म्यूजियम में गए तो वो कहने लगा, आईना दलील, मैं क्या दलील फी, मैं दलील हूं, दलील कहते हैं रहबर कहां है, ट्रांसलेशन कहां है, मैं क्या मैं ट्रांसलेशन हूं। और उन्होंने सारी चीजों के तर्जमे किए और मैं 90-80% तर्जमा उनका बेहतरीन करता गया, करता गया, करता गया, एक एक चीज समझाता गया। पर उनकी नजरों में जब मेरा नजरें मिली है ना, नजरों में नजरें मिली हैं, मैं अरबी बोल रहा था और लाजवाब बोल रहा था। और उसके बाद वो दरवेश उठे हैं, रिजाले गायब थे, चूंकि एक पल में गायब हो गए हैं। फिर मुझे याद आया, कबर में हर बंदा अपनी बोली बोल देगा, भूल जाएगा। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, कबर में हर बंदा अरबी बोलेगा। चलो आप ऐसा करें, ये नेशनल ज्योग्राफी जानवरों के जो ये हैं, इसमें देखें, एक सांप है ऐसा जो सिर्फ इंसान को देखता है, बस उसके बाद इंसान की नजर में एक दफा नजर मिल गई है, इंसान हिल नहीं सकता, हट नहीं सकता, वो नजर से ऐसी उसको जामित कर लेता है, आता है बहुत खुशू खुशू ध्यान और तवज्जो से इंसान को डस और मार के चला जाता है, बंदा नहीं हिल सकता। इस नजर को रूहानियत के दूसरे लफ्जों में तवज्जो भी कहते हैं, कि मुर्शिद की तवज्जो मिल जाए, किसी दरवेश की तवज्जो मिल जाए, किसी अल्लाह वाले की तवज्जो मिल जाए और इस मजमे की तवज्जो मिल जाए जिस मजमे में आज आप बैठे हैं, इस मजमे की तवज्जो मिल जाए। ना मालूम मेरे दाएं बाएं, मेरे आगे मेरे पीछे कौन मालिक बिन दिनार बैठा है, जिसपे लोग थूक रहे हैं, जिसपे लोग छिलके फेंक रहे हैं, जिसके लोग दिरहम को खोटा कहते हैं और जिसको लोग थके दे रहे, मजाके कर रहे हैं, पर वो ऐसे उसने देखना है, अल्लाह से ऊपर से फैसले करवा लेने हैं, बस सिर्फ देखना है और कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है उसने, अल्लाह से फैसले करवा लेने हैं। उसने देखना है, अल्लाह के दोस्तों का अल्लाह से ताल्लुक होता है, सिंध की बात है। एक साहब थे, अपने पांव पे ना मेंढक की चर्बी मल लेते थे, मेंढक मार के ना, बहुत सारे मेंढक, उसकी चर्बी निकाल के पांव पे मलो, आग और अंगारों पे अगर चलो तो आग अंगारे असर नहीं करते। वो एक बड़ा सा गढ़ा बना लेता था ऐसे लंबा, उसमें लकड़ियां जलती थी, मखलूक इकट्ठी होती थी, और फिर वो आग से निकल के यूं जाता था और कहता था मैं भी हक हूं और मेरी सारी कहानी भी हक है। लोग बड़े परेशान हैरान होते, एक दुर्वेश मस्त अलस्त कहने लगा आ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन पहले पांव साबुन से धुलवाऊंगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, पहले पांव साबुन से धुलवाऊंगा, ये ना वो मरे। अच्छा लोगों को क्या पता ये फन क्या था, लोग तो कहेंगे शायद कोई हक वाला आदमी बनता है, पहुंची सरकार की आखिर हो गई है। लोग भी कहें तो पांव धोने से क्या होता है, धो पांव, उन्हें कभी पांव मैले ना हो, साफ सुथरे पांव हमने लेके आग में जाना है। अब अंगारे लगे हुए हैं, खंदक बनी हुई है लंबी, उसमें अंगारे दहक रहे हैं, मखलूक जमा है कि आज जनाब फला ने अंगारों में देखो यूं जाना है और यूं जाना है, अंगारों में खेलता था, यूं जाना है यूं जाना। सबने गैरत दिलाई, पांव धो ले क्या हर जाए, अब वो क्या कहे पांव पे मैंने क्या मला है, मुझे क्या बता। जबरदस्ती दुर्वेश भी डाडा दुर्वेश था, फकीर था, उन्हें जबरदस्ती पांव धुलवाए और खुद कहा अल्लाह अकबर। हाँ, और उसकी जो चीखें थी वो कह रहे पकड़ के चल, आखिर तक ले गया, पांव सारे चल गए और उस दुर्वेश के पांव का छाला भी ना बना। हम तो हर पल नजरों के काबिल हैं, हम तो हर लम्हा नजरों से काबिल हैं। आज मेरे पास एक साहब आए, बड़े दुनियादार, ऐसे देखा मैंने उनकी पेशानी, हुई इस पेशानी के अंदर तो नूरे विलायत है। और मैंने उन्हें कहा और उनकी आंखें भीग गईं कि ये फकीर क्या बात कह रहा। और मैंने कहा भाई तू दुनियादार है तो मेरे पास सारा दिन दुनियादार आते हैं, पर तुझे खबर नहीं है कि तेरी पेशानी क्या बोल रही है। हाँ, एक दुर्वेश आए, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, अत्तार अतर वाले को भी कहते हैं, अत्तार पंसारी भी कहते हैं, हकीम हर्बल मेडिसिन हर्बल स्टोर, उसमें इतर भी होता है दवाई भी होती हैं, अत्तारा भी कहते हैं। एक दुर्वेश आए और देखा कि इस पेशानी के अंदर विलायत है, देख लिया पहचान लिया, बस अब सिर्फ सट मारने की जरूरत थी, सट समझते चोट, बस सिर्फ चोट मारने की जरूरत थी। कहने लगे कैसे मरेगा, वो दुर्वेश कहने लगे शेख फरीदुद्दीन अत्तार इमाम विलायत कैसे मरेगा। उन्हें क्या मतलब, कहने लगा हर बोतल में हर डब्बे में हर जड़ी बूटी में हर जगह तो तेरी जान अटकी हुई है, मरेगा कैसे, तेरी जान कैसे निकलेगी। ये बेख्याली से कहने लगे बाबा मुझे छोड़, तू बता कैसे मरेगा। उन्हें कहा मैं कैसे मरूंगा, दुकान के सामने वहीं थड़े पे चादर ओढ़ी और लेट गए, देखा तो बाबा जी मर गए। वो असल में अपनी विलायत मुंतकिल करने आए थे, उन्हें पता है कि नूरे विलायत पेशानी में मौजूद है, पेशानी को पढ़ लिया था।
हमें तो जिंदगी में हर पल निगाह की जरूरत है, किसी फकीर दुर्वेश की निगाह में रहें। मैंने आपको बताया ना कि बच्चा मां की निगाह से इधर उधर हो जाए, लाख बच्चे को दुनिया जहान दे, कहते अम्मा मिलवा, बस मां मिलवा, बाकी कहानियां झूठियां। और जब मां मिल जाती है फिर कहते हैं सब कहानियां सच्चियां। मां की नजर में रहता है बच्चा और मां की तवज्जो में रहता है, मां की नजर में रहता है, मां की तवज्जो में रहता है। हम किसी फकीर की नजर और तवज्जो में आ जाएं, और आएगा उस वक्त जब कदरदानी और अदब होगा, जब तलब और तड़प होगी, जब फकीर बन के आएंगे। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। तेरे दर का जो भी फकीर, बगदाद की गलियों में ना हम एक कसाईयों की मार्केट में गए, मगरिब के वक्त दुकानें बंद हो जाती हैं, एक दुर्वेश को तलाश कर रहे थे और मैं एक लफ्ज कह रहा था, बगदाद दिया मैं गलियां फिरा तो कूका मीरा 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 मीरा, कहते हैं हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी को। एक हमारा बाबा जी थे वो ये कहते रहते थे, मैंने बाबा जी को आवाज दी, बाबा जी मर गए अपने रूहानी, वैसे मैंने ऐसे आवाज दी, मैं कहा बाबा जी बगदाद की गलियां और मैं मीरा मीरा कूक रहा हूं। बाबा जी तो पढ़ते थे ना, मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बगदाद की गलियां थी और एक दुर्वेश को ढूंढ रहे थे, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुपके चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना। हमें हर पल निगाह की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, किसी की निगाह में आ जाएं बिगड़ियां बन जाती हैं, और कहीं किसी की निगाह से गिर ना जाए, हां गिर ना जाए, नजरों से ना गिर जाए, जज्बों से ना गिर जाए। फरमाए जो शख्स ईशा की नमाज के बाद दो रकात इस तरह अदा करे कि हर रकात के बाद एक बार सूरत फातिहा और 21 बार सूरत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, अल्लाह उसके लिए जन्नत में दो महल तैयार कर देते हैं। हजरत अली बिन अबी तालिब ने हजूर से रिवायत की, जो सफर करते वक्त 11 बार कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, कितनी दफा, जो सफर करते वक्त 11 बार कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उस सफर के शर को उससे दूर कर देंगे, खैर उन्हें इनायत कर देंगे। हजूर जिस शहर में जिस बस्ती में तशरीफ ले जाते थे ये दुआ फरमाते थे, खैरा हाजे सूखे व खैरा माफिया, शर्रा और शर्रा माफिया, अल्लाह यहां की खैर मुझे अता फरमा और यहां के शर से मुझे बचा। और फरमाए जो बंदा सूरत कुल हुवल्लाह सूरत कितनी दफा पढ़ेगा, अल्लाह पाक सफर की खैर उसे अता कर देता है और अल्लाह उसके शर से उसको महफूज कर देता है, कोई हासिद कोई दुश्मन कोई शर, अल्लाह पाक उसको महफूज कर देता है और अल्लाह पाक उसको खैर अता फरमा देते हैं, शर से महफूज फरमा देते हैं। फरमाए जब नाकूस बजता है कोई गाना सरंगी बजती है, अल्लाह का बड़ा गजब होता है, फरिश्ते उतर पड़ते हैं, जमीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ने वाले हैं और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ा उसकी वजह से अल्लाह गजब को टाल देते हैं। सोचें कि हमें यह सूरत कुल हुवल्लाह की जो हम सैकड़ों हजारों लाखों दफा हर जुमेरात पढ़ रहे हैं और यह हर साल 11 जुमेरातें आती हैं, सोचें इस पढ़ने की वजह से अल्लाह कितने अजाब टालता होगा और कितनी बलाएं कितनी वबाएं और कितने मर्ज और कितने कहत और कितने हालात और कितनी परेशानियां रब टालता होगा, आप सोचें तो सही। तो सिर्फ चंद बार सूरत कुल हुवल्लाह फरमाए जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसकी वजह से गजब को दूर फरमा देते हैं, अपने गुस्से को ठंडा कर देते हैं। सुभान फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत है, जो एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ता है उसके लिए बरकत है, जो दो बार पढ़ता है उसके घर वालों के लिए बरकत है, जो तीन बार पढ़ता है उसके उसके घर वालों और पड़ोसियों के लिए बरकत है। अब बोलो,
जो एक दफा पढ़ता है उसके लिए बरकत, जो दूसरी दफा पढ़ता है उसके घर वालों के लिए बरकत, और जो तीन दफा पढ़ता है उसके उसके घर वालों और पड़ोसियों के लिए बरकत है। अल्लाह करे हमसे बरकत ना छूटे, हमसे बरकत ना चूके, हमसे बरकत ना छीने। यकीन जानिए बेशुमार लोग मेरे पास आते हैं, मेरे वालिद फलां ओहदे पे थे, मैं खुद फलां ओहदे में था। मैं उस दिन अपने भाई से एक बात कह रहा था, उनके बेटे का अकीका था। मैं एक बात पूछ रहा था भाई से, मैंने कहा भाई फलां खानदान में बहुत दौलत और बहुत माल थी, बहुत माल था दौलत थी, उसके मरते ही घर में फाके क्यों आए? फिर उस बंदे ने जो मुझे बातें बताई, उन बातों के पीछे ये थी, जो माल आया था उसमें बरकत नहीं थी, कसरत थी। कुत्ती कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है? कुत्ती में कसरत होती है, बकरी में बरकत होती है। कुत्ती में कसरत होती है। क्या किसी ने कुत्ती के रेवड़ देखे हैं? क्या सड़कें ब्लॉक हो गई हों बकरियों के रेवड़ से? सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हों, सड़कें ब्लॉक हो गई हों, कभी देखें? बकरियों के रेवड़ देखे हैं? अल्लाह से बरकत मांगा करें, अल्लाह मेरी और मेरी नस्लों के लिए बरकत अता फरमा। सोचें जो एक दफा कुल हो अल्लाह पढ़ता है उसके लिए बरकत, जो दूसरी दफा पढ़ता है उसके घर वालों के लिए बरकत, और जो तीसरी दफा पढ़ता है उसके पड़ोसियों के लिए बरकत। एक बुजुर्ग थे, मकान था 1 रुपए का, मिसाल दे रहा हूं, या 100 रुपए का, मांगते थे 500 रुपए। लोगों ने पूछा किस चीज के 500 मांगते हैं? कहा मेरा पड़ोसी फलां, जानते हो? कहा हां जानते हैं। कहा मैं उसके पड़ोस के 500 मांग रहा हूं कि वो दिन रात ऐसे रूहानी अमाल करता है, दिन रात ऐसे सदकात सहावत करता है, दिन रात इतनी दुआएं करता है कि पड़ोसी भी खाते हैं। लोगों ने कहा तू सच कहता है। कहा मकान 100 रुपए का है, मैं जो 500 मांगता हूं उस पड़ोस की वजह से मांगता हूं। मेरा पड़ोसी ऐसा है जिसके अंदर बरकत है। अल्लाह सूरत इखलास के पढ़ने वालों पे दुआ है, अल्लाह सूरत इखलास के पढ़ने वालों को बरकत अता फरमा। अल्लाह से बरकत मांगे, कभी कसरत ना मांगे, कभी कसरत ना मांगे, और नस्लों को बरकत ही रहेगी, कसरत छिन जाती है, कसरत लुट जाती है। कितने लोग देखे हुए नामवर बेनिशां, कैसे कैसे जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, न गुल हैं न गुंचे, न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजां कैसे कैसे, हर एक दिल पे हैं दाग नाकामियों के, निशान दे गया बेनिशां कैसे कैसे। अगर अपनी नस्लों के लिए कुछ दौलत, कुछ माल, कुछ चीजें छोड़ के जाना चाहते हैं, मेरी मिन्नत है, मेरी दरखास्त है, मेरी मिन्नत है, मेरी दरखास्त है, नस्लों के लिए बरकत छोड़ के जाइएगा। अपने बेटों को, बेटियों को, औलाद को डिग्रियां, माल, कोठियां, बंगले, भरे हुए ट्रक जहेज के, सोने के सेट, हीरे के सेट, ऊंटनियां, गायें, भैंसें, फैक्ट्रियां, ये जहेज में देते हैं, विरसे में मिलती हैं। मुझे कोई ऐसी जगह बता दें, मार्केट की महंगी मार्केट, कोई मॉल बता दें जहां बरकत और नसीब भी जहेज में मिलती हो और बख्त और बरकत भी मिलती हो, कोई है जगह? एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे थे, जिस्म ढल गया था, औलाद जवान हो गई थी। कहने लगे अब्बा जी ने, हमारे यहां रिवाज था
ये छज होता है, मैं अब छज की क्या वजाहत करूं, अब तो जवानी नौजवानों के लिए छज भी म्यूजियम में रखना पड़ेगा, अब भी देहातों में है, जिसमें ना दाने को साफ करते हैं, ऐसे तिनकों का होते हैं, दाने साफ करते हैं। और पहले मशहूर होता था कि फलाने अपनी बेटी को छज भर के सोने का या जेवरों का या चांदी का दिया है, कहा अब्बा जी ने छज भर के दिया था। और एक बंदा छज लेके खड़ा हुआ था ऐसे, और बिरादरी आ रही थी और देख रही थी, और हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी थी। हाँ, छज लेके खड़ा हुआ था और लोगों को दिखा रहे थे, लोगों देखो मैंने बेटी को इतना जेवर, तो इतना तो सिर्फ जेवर दिया है, बाकी क्या दिया होगा, बाकी क्या दिया होगा। कहा अब्बा जी ने इतना कुछ दिया पर बरकत साथ नहीं दी थी। और उस वक्त शादी को 23 साल हो गए थे जब मुझसे मुलाकात हुई थी, जवानी ढल गई थी, औलाद जवान हो गई थी, और वो खातून और मवार दोनों रो रो के कह रहे थे, 3 बच्चे थे, इनको कैसे पढ़ाएं, कैसे पालें, इनकी शादियों की उम्रें हो रही हैं, कैसे करें, किराए का घर है, किराए के घर की हालत यह है कि घर बदल बदल के फर्नीचर सारा टोटे टोटे हो गया है, घर रिस्क हर चीज खत्म हो गया है, वो छज वो सारे कोठियां बंगले हर चीज बिक गई हैं। बाप बूढ़ा हो गया है बहुत ज्यादा, अब जाती हूं ना, बाप कहती है बेटी मैं तेरे बरकत और नसीब के लिए कुछ ना कर सका, अब तो मेरे पास भी इतना नहीं है, अब मैं खुद बूढ़ा हो गया हूं, बेबस हो गया हूं, औलाद जवान हो गई है, बेटी अब मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मैंने जिंदगी के 23 साल तुझे भरा है भरा है भरा है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। मेरे पास एक खत आया, खत, मुझे खत के अल्फाज याद हैं, बाज लफ्ज ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं भूलते। मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। खत आया, उसमें लिखा था कि मेरे वालिद कहते थे कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए यह छोड़ा है, तुम्हें यहां फलां यूनिवर्सिटी की डिग्रियां दिलवाई हैं, बेटा इतना माल है, इतना बैंक बैलेंस है, बेटा ये तेरे लिए अब्बा जी कहते थे, और हम खुश होते थे। एक दफा हमारे वालिद के घर हमारे रिश्तेदारों में कोई दूर परे के रिश्तेदार आए और थे गरीब और बड़ी उम्र के थे, वालिद साहब ने उनकी बड़ी इज्जत की, बड़ी खिदमत की, आखिर में कहने लगे मियां साहब, मैं नाम नहीं लेता, मियां साहब औलाद के लिए क्या छोड़ा। कह रहे अब्बा जी ने सीना ताना फखर से, और अब्बा ने गिनवाना शुरू किया, कहा चुप करके गिनते रहे, सुनते रहे, गिनते रहे, अब्बा जी वो सुनते रहे, ये गिनते रहे, वो सुनते रहे। जब अब्बा जी चुप हो गए बड़ी लंबी लिस्ट के बाद, कहने लगे मियां मैंने तो तुझे अकलमंद समझा था, पढ़ा लिखा आदमी है, अफसोस तूने औलाद के लिए कुछ भी ना छोड़ा। कहने लगे अब्बा जी को हल्की सी तलखी महसूस हुई, हमने महसूस किया, लेकिन मकामे अदब था, बड़ी उम्र के थे, वाले साहब उनकी इज्जत करते थे। अब्बा जी ने उनसे पूछा कि हाजी साहब क्या मकसद, फरमाया तूने सारी कसरत छोड़ी है, कसरत छोड़ी है, कसरत छोड़ी है, क्या अपनी नस्लों के लिए बरकत का कोई जर्रा भी छोड़ा है। कहा कि वालिद साहब ने सुनी अनसुनी कर दी, कहने लगे बाबा जी ये सब कुछ यही है। कहने लगे वो हाजी साहब कहने लगे हाँ ठीक है आप सच कह रहे हैं। उनके लहजे में एक थकन थी, कह काश इसने मेरी बात की कदरदानी नहीं की। कहा वो उस वक्त हमने भी महसूस ना किया, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये जमीन की चक्की चलती है, एक वक्त अब ये आया है कि हमारे घर में जर्रा थेला पैसा नहीं है, इज्जत वकार शान और शौकत नहीं है, दौलत कसरत कुछ भी नहीं है, हर चीज आंखों से आंखों के सामने गई, आई कैसे थी और गई कैसे, आज एहसास होता है। बाबा जी कहते थे कि क्या तूने अपनी औलाद के लिए बरकत भी छोड़ी है। और कहा कि बाबा जी ने एक दफा फिर मुझे कहा था, मुझे कहा था, खातून का खत था कि बेटी बरकत बरकत वाले मजमु में मिलती है और ये तस्बीह खाने के मजमे जहां से मैं भी ले रहा हूं, बरकत बरकत वाले मजमु से मिलती है। ये परदेशी मुसाफरों का मजमा। एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत मुश्किलात मसाइल हैं, तरक्कियां कामयाबियां चाहता हूं, इज्जतें शान और शौकत चाहता हूं। फरमाने लगे 40 परदेशी जमा कर, लिल्लाहियत भरे, खलूस भरे, 40 परदेशी जमा कर, 40 परदेशी जमा कर, 40 परदेशी जमा कर और दुआ करा, आमीन कहे, तेरे मसले हल हो जाएंगे। क्या ख्याल है? आप सड़कों पे चलते, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, बसों के अड्डे पे जाएं और 40 परदेशी बड़ी मुश्किल से जमा कर भी लें, क्या ख्याल है? जरूरी है कि वो मुखलिस होंगे? क्या गारंटी है आपके पास कि वो 40 परदेशी होंगे लेकिन वो मुखलिस होंगे? गारंटी तो नहीं है, गारंटी तो नहीं है। लेकिन क्या ख्याल है जो तस्बीह खाने में आए हुए हैं? मैं लाहौरियों से कह रहा हूं, लाहौरियों, ये परदेशी तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं। हाथ खड़ा करें परदेशी, ऊंचा, ओहो, बस, ये लाहौरी परदेशी तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं। और एक ये परदेशी हैं, एक लाइव 10 पूरी दुनिया में जा रहा, ये कैमरा मेरे सामने है, ये ऊपर का कैमरा मेरे सामने, ये कैमरे 2 लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में ये दास्तान जा रही है और 216 मुल्क जजीरों समेत, इसमें जजीरे भी शामिल हैं, 216 मुल्क जजीरों समेत में कहानी चल रही है तस्बीह खाने की, दर्श की, और कहां कहां परदेशी बैठे हुए हैं। और फेसबुक की रीच हमारी हर महीने की 12 से 15 करोड़ है, गूगल में चेक कर लें, ये हम खुद नहीं बना सकते। और हमारे लाइक्स मिलियंस में हैं। ये परदेशी हमारी आज की दुआओं में, हमारी आज की इस महफिल में, ये परदेशी हमारी आज के इस मजमे में शामिल हैं। एक परदेशी ये हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, एक परदेशी वो हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे साथ बरहरास्त हैं, जिसे लाइव कहते हैं, ये मौजूद हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं परदेशियों की दुआओं में शामिल है, आप कितने नसीब वाले हैं परदेशियों की दुआओं में शामिल है। अब फिर सुने वो बात और दिल ठंडा हो जाए। फरमाया जो एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है तो अल्लाह कहता है तेरे लिए बरकत है, 2 बार पढ़ता है तो अल्लाह कहता है तेरे घर वालों के लिए बरकत है, और जब तीसरी दफा पढ़ता है मेरा अल्लाह कहते हैं तेरे पड़ोसियों के लिए बरकत है। सोचें, जो रोजाना 1 तस्बीह 2 तस्बीह पढ़ लेता होगा, जो रोजाना थोड़ा या ज्यादा पढ़ लेता होगा, उसके लिए बरकतों के कितने दरवाजे खुलते होंगे, कोई सोच सकता है? बोले। और अगर हमारे पड़ोस में बैठ के कोई बंदा पढ़ रहा होगा, उस पड़ोस में बैठे बंदे को की बरकतें कहां कहां जा रही होंगी, कहां कहां जा रही होंगी, सोचें तो सही कि खैरें कहां कहां जा रही होंगी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जा रहा था, मैं वहां गया ना उनके मजार पे, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे जनाजा जा रहा, और एक बंदा रो रहा था सबसे ज्यादा। सुनने की बात है, तवज्जो की बात है, एक बंदा सबसे ज्यादा रो रहा था। तो लोगों ने कहा कोई नाश शनासा चेहरा नहीं है, अननोन, कोई ना वाकिफ चेहरा है, कौन है, हम तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते कौन है। एक बंदे ने पूछा बाबा तो कौन है? अब उसने जो गम भरी कहानी सुनाई, जरा वो सुन लीजिएगा। कह लगा मैं शेख का पड़ोसी हूं, मैं सारी उम्र इनके ऊपर कहानियां इतराज सुनता रहा, क्यों, शहरदार और रिश्तेदार, उन्होंने नबी को ना माना, मक्का मुकरमा में हिजरत करने के पर मजबूर करने वाले यही 2 तबके तो थे, शहरदार और रिश्तेदार। पर मैं सारी उम्र कहानियां सुनता रहा, मैं सारी उम्र इनके बारे में सुनता रहा, सुनता रहा और एतराज करता भी रहा, सुनता भी रहा। रात सोया तो किसी कहने वाले ने कहा, दुनिया यतीम हो गई, आज हमारा एक दोस्त चला गया। हाँ, अल्लाह के वली का साया, पर मैं जब तक हजरत मदनी जिंदा थे जादू असर नहीं करता था। आप अल्लाह के वली के साये के बारे में क्या कह सकते हैं? अल्लाह के वली का वजूद, मैं दुनिया यतीम हो गई। तो इसने पूछा कहने वाले से, क्या हुआ? कहा, हमारा एक दोस्त इस दुनिया से चला गया, दुनिया यतीम हो गई। कहा, कौन सा दोस्त? कहा, तेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर। कहा, वो अल्लाह का दोस्त था? विलायत का शहंशाह था। कहा, मुझे इनके विसाल पे अफसोस नहीं। अब अगली बात उससे भी हैरत अंगेज है, मुझे इनके विसाल पे अफसोस नहीं, मुझे अपनी नाकदरी पे अफसोस है। मैं सारी उम्र इनके बारे में अंदाजे लगाता रहा और नाकदरी करता रहा, आज मैं अपनी नाकदरी पे रो रहा हूं कि ऐ काश मैं इनसे फैज पा लेता, मैं इनसे नफा पा लेता, ऐ काश मैं इनसे कुछ हासिल कर लेता। बेफैज रहा, महरूम रहा, सिर्फ बेकदरी की वजह से। मैं सारी उम्र लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, दिल के वसवसों पे, अंदर की कहानियों पे मैं इन्हें अल्लाह के वली को तोलता रहा, थर्मामीटर लगाता रहा। अल्लाह पाक के खजानों से सूरत इखलास के जरिए बरकत मांगे। या आप जो मजमा बैठ के सूरत इखलास पढ़ता है, एक मकबूल अमल है, एक महबूब अमल है, एक मुबारक अमल है कि अगर कुछ अल्लाह के नेक बंदे सुलहा या परदेशी या मुसाफिर या तलब वाले तड़प वाले बैठ के 40,000 दफा जिस मकसद के लिए सूरत कुल हुवल्ला पढ़ेंगे, वो मकसद हासिल हो जाएगा। आज हमारा पांचवा जुमा है, पांचवें शबे जुमा है, ये 11 शबे जुमा का अमल हर साल होता है। आज हमारी पांचवी शबे जुमा है और पांचवी शबे जुमा में बैठ के हम 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ेंगे। सच पूछे, नाम 40,000 का है, पता नहीं लाखों पढ़ी जाती है, और एक पूरा मजमा है पूरी दुनिया का हमारे साथ शामिल, और ये मजमा बैठे हैं, इस गली की इमारतें और बिल्डिंग्स भरी हुई हैं मजमे के, और ये मजमा बैठ के 40,000, तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, और 40,000 लाखों की तादाद में सूरत इखलास पढ़ता है। अब सुने एहसान दानिश था एक शायर, एहसान दानिश बड़ा शायर था। शाही किले में एक आने की दिहाड़ी पे बैठा मजदूरी कर रहा था और अशआर पढ़ रहा था। लाहौर का एक नाम था, लाहौर का एक नाम था, लाहौर का सर अब्दुल कादिर। वो सैर कर रहे थे, बड़े वो रौसा थे, लाहौर के रईस थे। हमेशा लाहौर अराइयों के पास रहा है, आज भी, या फिर कश्मीरियों के पास रहा है, दूसरे बात। तो वो ऐसे जा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने इधर ये क्या कर रहे तुम? अदब के वो खुद अदीब थे, उनका एक निकलता था मकसद, मैगजीन निकलता था। ये क्या कर रहा है? कहां से सुने? उन्होंने कि मैं क्या खुद कहता हूं। अच्छा, और सुना। तो शायर को किसी बड़े आदमी ने अपनी छांव में ले लिया और वो एहसान दानिश बन गया। छांव में लेने वाला वही था हफीज जलंधरी, जिसने हमारा तराना लिखा था, इसको भी कोई छांव में लेने वाला था, वो भी यही था सर अब्दुल कादिर। इनका बेटा पुरानी काबीना में मंजूर कादिर जो है वो एक वजीर भी रहा है वफाकी, हमारी पुरानी काबीना में, बहुत पहले अयूब खान के दौर में पहले। अब एक बात जो सुनाना चाहता हूं वो सुनिए। एहसान दानिश कहता है कि मैं अनारकली में रहता था, अनारकली में, तो मैं एक पान वाला था, उसके पास पान लेने जाता था अनारकली में। उसका पान बहुत अच्छा बनाता था वो, क्योंकि मैं कांदले का था, इंडिया कांदला एक जगह है, तो हमें पान का शौक था, तो मैं पान लेने जाता था। मैं फिर जाता था तो उससे दोस्ती होगी कुछ देर, उसके पास मुंह में पान रख के बैठा रहता था। थोड़ी देर होती थी, एक नौजवान आके ना गंदे कपड़े मैले कपड़े, उस वक्त एक आने के चार पान आते थे, अच्छे गंदे मैले कपड़े पहने आके फलाने थड़ी में बैठ जाता था। मैंने एक दफा देखा, तवज्जो ना की, दूसरे दिन देखा, कई दिन से देखा, आखिर मैंने पूछा, मैंने कौन है? कहने लगा ये लाहौर शहर का रईस है, फला। नाम सुना? कहां? कह उसका बेटा है। कहने लगा वो तो बहुत बड़ा रईस था। कहा आगे सुन, ये रोजाना 5 रुपए का एक पान मैं बनाता हूं, 5 रुपए का पान। आने के कितने पान आते थे? हैं? फुला दे हार ते 1 रुपए दे 4। हमारे एक बाबा अक्सर आवाज लगाता था, फुला दे हार ते 1 रुपए दे 4, रुपए के 4। कितने पान आते थे? और 5 रुपए का पान फिर क्या होगा उसमें? जाफरान, मुश्क, कस्तूरी, अंबर उस पान में डले हुए होते थे। तो कहा, अब आगे सुने, कहा कि इसके बाप ने इसकी जो दौलत और माल छोड़ा उसमें खैर और बरकत नहीं थी। अल्फ लफ्ज कहे हैं एहसान दानिश ने, और कुल्हो वाला पढ़ने वाले के साथ बरकत शामिल हो जाती है। गौर से समझिएगा, हाय क्या बात कह बैठा हूं मैं आप। कहा कि ये रोज 5 रुपए का पान खाने आता, एक वक्त आया पैसे खत्म हो गए। कहने लगा चाचा पान उधार दे दे, पैसे नहीं है। मैंने कहा बेटा ले ला, रोज आता है। चंद दिनों के बाद मैंने देखा तो बंदा खाली हो गया है, बंदा खाली हो गया। बोला मुझे, कहने लगा, मुझे कहने लगा ऐसे हर बात में, वो उस्ताजी कहता था, उस्ताजी पैसे थे तो आना जाना था, जब देखा पैसे खत्म हो गए तो उसका चौधरी कहने लगा, बोला जा धंधे का वेला है, समझने वाले समझ जाएंगे, बोला जा धंधे का वेला है, आके दरवाजा ना खटखटाए कर, ऐसे ना बैठे कर। क्यों? पता चला कि भोले का, भोले की जेब खाली हो गई है, भोला खाली हो गया है। मैंने पूछा अब क्यों आता है फिर? कहने लगा अब एक और नौजवान आता है जो 5 रुपए का पान लेता है, थोड़ी देर मुंह में रखता है, फिरता है, चलता है, फिर उगल देता है। ये इंतजार में बैठा होता है, उसका उगला हुआ पान मुंह में डाल के फिर चला जाता है। अब एक और नौजवान आता है, पान लेता है 5 रुपए का, 5 रुपए का पान लेता है, मुंह में रखता है, अनारकली लाहौर में रखता है, और रख के चलता है, उसका मजा लेता है, बस थोड़ा सा मजा लेता है, उसको चूसता है, उसमें जो मुश्क कस्तूरी अंबर जाफरान है वो चूस लेता है, चूस के लेके उसके बाद उगल देता है, और ये इंतजार में बैठा होता है, उसका उगला हुआ पान मुंह में रख के ये चला जाता है। नगोरे सिकंदर न रही कब्रे दारा, नगोरे सिकंदर न रही कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल है न ऊंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजां कैसे कैसे। खैर और बरकत। अब फिर सुने, अब पान आने के 4 और एक 5 रुपए का 1। अब यह हदीस मेरे कमली वाले की रिवायत समझ आएगी कि जो एक बार कुल्हो वल्ला पढ़ता है अल्लाह उसके लिए क्या देता है? बरकत, बरकत। एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा, मैं पढ़ रहा था, कहा मुसलमानों का एक लफ्ज बरकत है, मैं इसकी तलाश में निकला। मैंने कहा बरकत से मुराद शायद कसरत होगी, ज्यादा होगी।
कहा तलाश में निकला, मुझे मिस्र में जाके एक बाबा मिला जिसने मुझे फिर बरकत की कहानी सुनाई। अल्लाह पाक बख्शे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, एक दफा कलमा पढ़ के उसकी रूह को हदिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैंने कलमा क्यों पढ़वाया? फरमाया जो किसी को एक दफा कलमा पढ़ के देता है हदिया, आपका कोई अजीज, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मुखलिस, आपका कोई जानने वाला फौत हो गया, आपको किसी पल में याद आया और आपने उसे एक दफा कलमा पढ़ के दे दिया, अब तो हमें तो, हमारे तो मजमे ने कलमा पढ़ा, पूरी दुनिया मेरे साथ शामिल है, उन्होंने कलमा पढ़ा। अब एक दफा कलमा पढ़ने के जरा फायदे सुन लिए, जरा तवज्जो अपनी मुतवज्जे कर ले, तवज्जो मुतवज्जे कर ले। मैं एक दफा जो फरमाया किसी को कलमा पढ़ के हदिया करता है, आपका वालिद, वालदा, दादा, परदादा, कोई अजीज, अल्लाह उसकी कब्र में 4000 नूर दाखिल करते हैं, 4000 रहमतें दाखिल करते हैं, 4000 मगफरतें दाखिल करते हैं और उसके 4000 गुना माफ करते हैं और उसके 4000 दर्जे बुलंद कर देते हैं। एक दफा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक दफा कलमा, क्या बात कर रहा था मैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक अजीब बात बताई थी और मैंने आपको बकायदा जंग अखबार का वो कालम जो पीर के दिन उनका छपता था उसका बकायदा हवाला दिया, आज भी वो नेट पे पढ़ा हुआ है, जंग अखबार का कालम उनका हर पीर के दिन छपता था। फरमाया मैं एक बंदे से मिला, उसकी उम्र कितनी थी याद है मेरा वाक्या? '96 ना आज तक बीमार हुआ, ना आज तक दवा खाई, ना आज तक उसे तकलीफ हुई। ये कौन कह रहा है? साइंस का बाबा। और जिसके अल्फाज हैं गैरों के लिए, ख्याल करना हमें तिरछी नजर से ना देखना, हम भी एटमी ताकत रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर कबर जिना दी जीवे हो गए, मुझसे कहने लगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह अकबर, अजीब बात कही, लेकिन पहले वो बात भूल जाऊंगा। मैंने उससे पूछा तेरी सेहत का राज क्या है, तेरी जवानी का राज क्या है, 96 साल का बाबा, तेरी फिटनेस और तंदुरुस्ती का राज क्या है? अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अल्फाज सुने, उस बाबे ने बताया कि मैं हर दाने और हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, हर दाने और हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर दाने और हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह। क्यों? फिर उस दाने और कतरे में बरकत शामिल हो जाती है, फिर उस दाने और कतरे में राहत शामिल हो जाती है, फिर उस दाने और कतरे में शिफा शामिल हो जाती है, फिर उस दाने और कतरे में फैज और फजल शामिल हो जाता है। क्यों? आका का फरमान, मेरे कमली वाले का फरमान है कि जब लुकमा या कतरा मुंह में जाता है अल्लाह से पूछता है, या अल्लाह इसके लिए बीमारी बन जाऊं या शिफा बन जाऊं, अल्लाह का अमर होता है तो वह शिफा बन जाता है, अमर नहीं होता तो वह बीमारी बन जाता है। और आप आंखों से देखते हैं घर में एक ही सालन एक ही चीज पकती है, कई बीमार हो जाते हैं कोई ठीक हो जाते हैं, या एक बीमार हो जाता है बाकी ठीक रहते हैं, अगर बीमार होना था तो सब होते। क्यों? उसके लिए हुक्म मिला है कि इसको बीमार कर दो। साइंस का बाबा कहता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कि वो बाबा कहने लगा 96 साल वाला बूढ़ा, 96 साल का बूढ़ा के क्या कि मैं हर दाने और हर कतरे में क्या पढ़ता हूं बोले, सुभान अल्लाह। अब ये चीज है जो मेरे आका कमली वाले ने फरमाया, हदूस का मफहूम है, फरमाया कि जो बंदा एक बार सूरत कुलो वल्ला पढ़ता है उसके लिए क्या बरकत, अब जब दूसरी जगह पढ़ता है
उसके घर वालों के लिए बरकत, और जो तीसरी दफा पढ़ता है उसके पड़ोसियों के लिए बरकत होती है, बरकत उसके पड़ोसियों के लिए बरकत होती है। और आगे सुने, और मैं जो रोजाना 40 बार कोलोवल्ला पढ़े, अल्लाह उसके लिए पुलिस सरात पर एक मीनार बनाएगा और यहां तक के पुलिस सरात में सहूलत से गुजर जाएंगे। अब एक और तोहफा सुन ले, सहल बिन साद से मरवी है और ये वो सहाबी हैं जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ। मदीना में सबसे आखिर में जिस मेरे कमली वाले के गुलाम का इंतकाल हुआ, उनका नाम है साल बिन साद, साल बिन साद। मैं के आखिर में उन्होंने एक दिन अल्लाह के हबीब की बारगाह में कमी रिज़्क की शिकायत की कि हुजूर रिज़्क की कमी है, रिज़्क की कमी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, तू घर में जब जाया कर एक दफा सलाम और एक दफा कौलो वल्ला पढ़ लिया कर। उसने ऐसा किया, अल्लाह ने उसको इतनी कसरत से रोजी फराग की कि उसका फैज पड़ोसियों तक पहुंचा के पड़ोसियों को भी अल्लाह ने खिलाना शुरू कर दिया। कहने लगा, गुर्बत की इंतहा क्या थी मैं क्या बताऊं, गुर्बत की इंतहा क्या थी मैं क्या बताऊं। छोटी सी दीवार थी दोनों भाइयों के दरमियान में, गांव देहात में ना दीवारें ऊंची नहीं होती। मेरी चची क्या करती थी, जो छिलके जो खाना जो चीजें खाती थी छिलके हमारे घर फेंक देती थी और कहती थी सड़ो जलो हम इतना अच्छा खाते हैं, हाय दुख देती थी। और कोई भी चीज होती थी हमारे घर फेंक देती थी हमें जलाने के लिए। एक दुर्वेश आए और उन्होंने हमें गुर्बत का हाल हमारा देखा पूछा, और मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, बेटा एक अमल बताता हूं, घर में जाया करना एक दफा सलाम एक दफा कौलो वल्ला पढ़ लिया कर, वजू है या नहीं है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, घर वालों ने पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं खवातीन को बताता हूं वो कैसे पढ़े। मर्द तो आते जाते रहते हैं, खवातीन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए, किचन से उस कमरे में जाए, समझ ले हम घर से निकले हैं, कौलो वल्ला पढ़ लें सलाम कर लें। क्यों? आले आले बतूल, आले रसूल, आले अकील, आले हसन, आले हुसैन, आले फातमा, इन हजरात की हस्तियों की जिंदगी में था और सहाबा की जिंदगी में था। और मैं एक दरख्त की ओट से जब दूसरे दरख्त की ओट में आते थे, बाहर निकलते थे, तब भी सलाम करते थे। उनके मुआशरे में इतना सलाम आम था, इसलिए सलामती आम थी, इसलिए बरकतें आम थी। कहने लगे, मैंने अमल शुरू कर दिया, कई अरसा करता रहा करता रहा। अब जो अल्लाह की मदद पहली पहली पहुंची बताऊं इस अमल की, अब जरा गौर से सुनिए। गुर्बत थी, तंग दस्ती थी, तीन तीन दिन के फाके होते थे, घर में गरीबी थी, जूती गांठने के लिए कहने लगे बाजोकत धागा नहीं होता था, फिर सुई टूट जाती थी, फिर बाजोकत सुई नहीं होती थी, और एक दफा किसी से सुई ले आए, उसका नका टूट गया, जूती थी मोटी। अब परेशान ये है कि उनको सुई वापस कैसे करें। गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम, या रख्त अकामत का सर अंजाम है बेजा, इस मंजिले पर खौफ पे आराम है बेजा, उकबा के यहां उकबा के सिवा सबका यहां काम है बेजा, मानेंगे नगी आरजुए नाम है बेजा। कहा मेरी हमारी चची हमें सताती थी ताने देती थी, और हमारे घर में गुर्बत थी और उनके घर में माल ही माल था, तमंगरी ही तमंगरी थी, खुशहाली ही खुशहाली थी। अब इन्होंने ये अमल करना शुरू कर दिया, कौन सा अमल, जिसकी रिवायत आज सुनी है, जब घर में दाखिल हो एक दफा सलाम और एक दफा सूरत इखलास कोलो वल्ला, बस अमल खत्म, मुख्तसर मुख्तसर। अल्लाह ने पढ़ना शुरू कर दिया, हम सब ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते 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 अब पहली मदद का पहला झोंका, पहली मदद का पहला कतरा सोने जरा गौर से। घर गया सलाम कर कोलो वल्ला पढ़ के, अम्मा भूख लगी है, रात भी नहीं खाया, कल दोपहर भी नहीं खाया, आज तीसरा पहर हो गया है। अम्मा कह लेगी, बेटा थोड़ा सा आटा पड़ा है पर लकड़ियां नहीं है, कैसे जलाऊं, और लकड़ियों के लिए पैसे कहां से लाऊं।
कहने लगे मायूस बैठे हैं, मायूस बैठे हैं, क्या करें। थोड़ी देर हुई, चची ने क्या किया, आपने देखा होगा अब भी ये जो लकड़ियां होती हैं इनके आगे पतली पतली शाखें होती हैं, पतली ने उस उनके घर में लकड़ियों की कोई रेड़ी उठाया होगा, पहले ऊंटों पे आती थी या कोई लकड़ियां आई होंगी, लकड़ियों की आगे जो पतली शाखें होती हैं उसमें कांटे होते हैं। चची ने क्या किया, वो पतले कांटे बहुत से जमा किए, वो लकड़ियों के घर में लकड़ियां जलाई जलाने के लिए जमा कर रहे थे, वो बहुत सारे कांटे जमा किया और इनके घर फेंक दिए। मेरी अम्मा कहने लगी बेटा लकड़ियां आ गई, दो तीन रोटियां पक जाएंगी, तीन रोटियां पक जाएंगी। थोड़ी देर हुई, चची ने फिर और फेंक दिए कि देखो मेरे पास फूल ही फूल हैं, तुम्हारे पास कांटे ही कांटे हैं। औरत का जो हसद होता है ना, औरत का इंतकाम होता है, औरत का कीना होता है, बड़ा खतरनाक होता है इंतकाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मतला का बही वफ़ज़लनी अला कसीरन मिम्मन खलक तफ़ज़ीला आमीन बिहुर्मत सैयदुल अबरार वल मुरसलीन। उन्हें क्या किया, उन्होंने उनके घर में कांटे फेंक दिए, पर वो उसके लिए कांटे थे, इनके लिए मदद का पहला कतरा था। कहो सुभान अल्लाह, मदद का पहला कतरा था। कहा कि अम्मा ने रोटी पकाई, मैंने एक रोटी खाई, एक रोटी दूसरे बहन भाइयों ने खाई, एक रोटी अम्मा अम्मा ने खाई, तीन दिन का तीन वक्त का फाका गुजारा हो गया। और वो मदद थी, मंदा रहने वाला है डेरा इस्माइल खान का, आज भी जिंदा है, इस वक्त कराची में है, और मुझे वाकया सुनाते हुए कहने लगा, मैंने गाड़ी वाले को कहा हुआ है जब भी नए मॉडल की गाड़ी आए पहली मेरी, बस पहली मेरी, हर वक्त मॉडल बदलता हूं, गाड़ियों पे गाड़ियां हैं, रिस्क पे रिस्क है, इज्जत पे इज्जत है, सेहत पे सेहत है, बरकत में बरकत है, तवंगरी पे तवंगरी है, नसीब पे नसीब है, बख्त पे बख्त है, माल पे माल है, खुशियों पे खुशियां हैं, राहतों पे राहत हैं। वजह सिर्फ घर में जा, एक दफा सलाम कर और एक दफा कुल हो अल्लाह पढ़। मेरे कमली वाले ने फरमा दिया बस बात खत्म खत्म, मेरे हुजूर ने फरमा दिया। क्यों, वो अब नजर में आ गया है, निगाह में आ गया है। मैंने आपको सुनाया नहीं एक सैयद का वाकया, आले रसूल मस्जिद नबी शरीफ में, मैं जब भी मस्जिद नबी शरीफ में जाता हूं उनकी मगरिब शीशा उनके पास बैठता हूं, बड़े दरवेश हैं, बड़ा ऐसे तोप सा पहना हुआ है, जुब्बा जैसे अरबी पहनते हैं, जेब में सऊदी अरब का नोट बड़ा 500 का ही है, बड़ा नोट 500 का है, नए नए नोट ऐसे 500 के निकालते, लोग आते थे ऐसे चुप करके मुट्ठी में दिए, और जब उनका राज खोला तो उस राज के पीछे राज बताऊं। आपको इल्म है पिछली दफा हजरत अली करम अल्लाह वजी की दुआ सुनी थी, याद है, और वो जो मुनाजात बैठ के पुकारते थे, हो मुनाजात पुकारते थे, उस दुआ के लफ्जों को सुने तो सही। हज़रत अली लाने वाले जिब्रील, बताने वाले कमली वाले, और पढ़ने वाले अली, क्या लुत्फ होगा, क्या रहमत होगी। और ये अल्लाह पाक की मिन्नतें हैं सारी, ये सारी मिन्नतें हैं, उस करीम की खुशामतें हैं, ये रब की मिन्नतें हैं सारी की सारी, ये अल्लाह की अजमतों के वाकयात हैं, ये अल्लाह की अजमतों के किस्से हैं, ये अल्लाह की अजमतें हैं। जरा डूब के सुनना, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा फिर वो वाकया सुनाता हूं। الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا أنت
الغوث خلصنا من النار يا رب
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع
يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت
الغوث خلصنا من النار
يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا إله إلا أنت
الغوث خلصنا من النار
يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مؤنسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت
خلصنا من النار يا
علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله
अगली दफा इससे आगे सुनेंगे।
क्या मिनते हैं जी चाहता है सुनते रहें, या मुकल्लिब अल-क़ुलूब या काशिफ अर, ओ मेरा रब, ओ मेरा सोना, ओ मेरा अल्लाह, ओ मेरा साईं, ओ मेरा सज्जन, अल्लाह के ऐसे, अल्लाहु अकबर। एक शख्स कहते हैं मैं गया तो हजरत अली मुनाजात में दुआओं में बैठे थे, मैंने महसूस किया ऐसे हैं जिसको किसी ने सांप ने डस लिया और तड़प रहा हो, या ऐसे हैं जिस मुर्ग को आधी छुरी फेर के फेंक दिया और वह तड़प रहा हो, या मैंने कहा यह बंदा नहीं बचेगा। उस इश्क में और रब की महब्बत में और अल्लाह के ताल्लुक में मुनाजात कर रहे हैं और तड़प रहे हैं। रब को पाने वाले, रब को मनाने वाले, रब को दिलाने वाले ये हस्तियां थीं, ये दर है, दर आहले बैत, दलियारे रसूल, सहाबा का दर, औलिया का दर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से मुनाजात की है, अल्लाह से मिन्नत की है, अल्लाह की जारियां की हैं। अजब है, क्या ख्याल है, जी चाह रहा था सुनते रहे, दिल मचल रहा था सुनते रहे। ओहो, और आप इन अल्फाज पे गौर करें, लफ्जों पे गौर करें, थोड़ी सी अरबी की शुद्ध बुद्ध हो जाए ना, ऐसे लफ्ज अंदर ऐसे चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं लाने वाले जिब्रील हैं और बताने वाले कमली वाले और पढ़ने वाले अल्लाह हैदर करार। हैदर कहते हैं शेर को और करार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाला, लबक लबक का हमले करने वाला, हैदर करार। अल्लाह से मांगना सिखाया है, अल्लाह से लेना सिखाया है कि मेरी मुसीबतें, मेरी परेशानियां, मेरी नाकामियां, मेरी मुश्किलें मैंने अल्लाह के सामने पेश करनी है, और यही सूरत इखलास का सबक है। कुल हुवल्लाहु अहद, यह सूरत इखलास का सबक है
اور یہ سورت اخلاص کی طاقت ہے کہ ایک دفعہ سلام کر بس، اور سلام کر کے جا، اور پھر کل کل واللہ بس گھر میں چلا جا، تیرا کام ختم، اب رب کے وعدے شروع، تیرا کام ختم۔ میری ایک درخواست ہے، میری ایک منت ہے، میرا ایک مشورہ ہے، زندگی کی کتنی مصروفیت ہو، کتنی کالے ملی ہوئی ہو، گھر میں گھر سے نکلتے موبائل فون ہو اور گھر میں جاتے موبائل فون ہو، پر چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے گا۔ کیوں؟ ہاں، آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ کے پاس بہت بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس بڑے مربع جاگیرے ہیں۔ میں ایک شخص کی قبر پہ کھڑا تھا، ہو 13,000 مربع زمین اس کی تھی، اس کی قبر پہ کھڑا تھا، اور اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، کراچی ایک ملازم کے پاس رہتا ہے، وہی اس کو روٹی دیتا ہے، اور میں اس کی حویلی میں گیا، اس کی حویلی میں گیا گھوڑے باندھنے کے لیے، وہ کم اس دور کے پردے، کرٹن، اس دور کی ٹائلیں، اس دور کے محل، اس دور کے بڑے بڑے نظام، میری عقل دنگ رہ گئی۔ اس کی قبر پہ میں گیا اور خاموشی سے سن کھڑا تھا، اور وہ ایک نام تھا پورے ہندوستان پاکستان بڑے صغیر کا، وہ کنگ تھا، وہ سکہ تھا، وہ کرنسی تھی، وہ نوٹ تھا، وہ لیبل تھا، وہ ٹائٹل تھا، وہ بیج تھا، اور اس کی ایک سکہ اور کہانی تھی، اور اس کی ایک دنیا تھی۔ خاموش قبر پہ کھڑا تھا، اور بیٹا زندہ ہے، اور آج بھی نوکر کے پاس رہ رہا ہے، اور نوکر اس کو روٹی دیتا ہے۔ میری منت ہے، آپ سے درخواست ہے، اپنی نسلوں کے لیے بہت دولت چھوڑ کے جائیں، کوئی حرج نہیں، مال چھوڑ کے جائیں، کوئی حرج نہیں، کیا حرج ہے؟ جاگیر، مال، دولت ملے، چھوڑ کے جائیں، اچھی بات ہے، اولاد کو فقیر چھوڑ کے جانا اچھی بات نہیں ہے، پر کوئی برکت بھی ساتھ چھوڑ کے جائیں۔ برکت، 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 برکت۔ کوئی برکت بھی ساتھ چھوڑ کے جائیں، ورنہ میرے دوستو، اللہ والو، اللہ والو، سب کچھ چھن جائے گا، سب کچھ لٹ جائے گا۔ ہزاروں مربع، مال، دولت۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، مخلص ہیں، حاجی صاحب، ان کی دو بیویاں تھیں، میں بوڑھے ہیں، چھوٹی بیوی فوت بھی ہو گئی، میں ان کے گھر گیا، جب گھر گیا مجھ سے کہنے لگے، یہ اسی بندے کا لاہور میں ایکڑوں میں، ایکڑوں میں وہ بہت بڑا محل ہوتا تھا، وہ بکا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس میں سے 10 مرلے جگہ میں نے لی، گھر بنایا، اس کا گھر ختم، اس کی زندگی ختم، اس کا تنکا تنکا ڈوب گیا۔ اور جس حویلی میں میں گیا تھا نا، وہ بھی بک چکی تھی، کسی کو کہہ کے لوا کے اس کا گیٹ کھلوایا تھا، ایک انچ جگہ اس کے پاس نہیں ہے، ایک ہاتھ کا لکمہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے، جب گھر میں داخل ہو سلام کر، اور ایک دفعہ بس ختم۔ آپ ایسا کریں، گھڑی دیکھیں، سلام کریں اور کلو والا پڑھیں، بتائیں کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، گھڑی دیکھیں یا موبائل دیکھیں، دیکھیں چار سیکنڈ، پانچ سیکنڈ، چار سیکنڈ، پانچ سیکنڈ، تین سیکنڈ۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ہوتا تھا حافظ، انجن، انجن کا نا انجن کہتے تھے، آنکھوں سے نہ بینا تھا، بڑا تیز انجن بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، 3 سیکنڈ والے، اور واقعی 3 سیکنڈ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ चलो 5 सेकंड कह दें, मुझे बताएं 5 सेकंड जिंदगी के अरबों गुजर चुके हैं, अरबों सेकंड नहीं गुजरे, लाखों गुजरे होंगे, अरबों गुजर गए, करोड़ों सेकंड जिंदगी हमारे गुजर गए हैं। क्या आते जाते एक कमरे से दूसरे कमरे, एक घर के हिस्से से दूसरे घर के हिस्से, घर से बाहर घर के अंदर, गली से बाहर घर के अंदर, सड़क घर के अंदर, अगर जाते हुए सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक दफा सलाम हल्की आवाज में, इवन कोई है भी नहीं घर में, तो आका का फरमान है फरिश्ते और जिन्नात तो हैं ना, नजर ना आने वाली मखलूक तो है, इसलिए सलाम और एक दफा कुल हुवल्लाह। यह रिवायत है जो मेरे हुजूर ने फरमाई है और मेरे आका ने फरमाई है, यह रिवायत है कि इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा कि पड़ोसियों को भी फैज मिला, पड़ोसियों को भी फैज मिला, इतना पढ़ा। क्या? एक दफा सलाम और एक दफा कुल हुवल्लाह। छोटा सा मोती है, हीरा जवाहर है, जिंदगी में ना भूल जाइएगा, बड़ी तल्ख जिंदगी है, जमाना बड़ी जल्दी भूल जाता है और बहुत जल्द मिटा देता है, बहुत जल्द मिटा देता है, और जमाना बहुत जल्द फरामोश कर देता है। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, जमाना एक पल में भूल जाता है, पर मेरी मिन्नत है, मेरी दरखास्त है, मेरी जारी है, मेरी इल्तिमास है आपसे, अपनी नस्लों को फक्र, गुर्बत, फाके, तंदस्तियां, फकीरियां और नौकरों के हवाले बेटा हो, और बेटा भी एक, पुत्र भी एक, ओ हो हो हो, एक पुत्र एक ही बेटा, और वो बेटा भी एक, और आज वो नौकर के हवाले है, बूढ़ा बेटा है, बूढ़ा बेटा है, और नौकर उसको रोटी दे देता है, और नौकर उसको दे देता है, और वो चुप करके खा लेता है। बाप क्या था? बाप के पास कसरत थी, बाप के पास बरकत नहीं थी, कुत्ती के रेवड़ कभी नहीं हुए, बकरियों के रेवड़ सदा आपने देखे, कुत्ती 6 बच्चे 7 बच्चे 9 बच्चे और बकरी 1 से 2 बच्चा, जिंदगी में काफले आते रहेंगे जाते रहेंगे, सफर हटते रहेंगे कटते रहेंगे, पर जिंदगी के इस सफर में सूरत कुल हुवल्लाह को शामिल कर ले। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, यकीन जानिए ठंडी आहें निकल जाती हैं, उनके माल दौलत, उनके उरूज, उनके कमालात नहीं सोच सकते आप कि वो माल दौलत में कितने आगे थे, और आज फक्र और गुर्बत ने उन्हें कहां पहुंचा दिया, गुमनामी की जिंदगी ने उन्हें कहां पहुंचा दिया। इंसान को जब माल मिलता है, ओहदा मिलता है और चीजें मिलती हैं, फिर जरा भूल जाता है, फरामोश कर बैठता है, हाल को देख के माल को भूल जाता है। माल कहते हैं अंजाम को, आगाज को क्या देखता है? अंजाम को देख, अंजाम को भूल जाता है, और जब अंजाम को भूलता है समझता है कि शायद दौलत दुनिया, सुने गौर से, दौलत दुनिया रूप जवानी, 4 चीजें, दौलत दुनिया रूप क्या, दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए, दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए, ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। अगर जिंदगी में अपनी नस्लों के लिए तमंगरी, इज्जत दौलत रिस्क सेहत और खुशहालियां छोड़ के जाएं, और बेटे आके कहें, पोते आके कहें, दादा जान आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, दादा जान आपका शुक्रिया, दादा जान आपका एहसान, कुछ ऐसा मांग के गए थे, कुछ ऐसा मांग के गए थे। मैं एक दरबार के गद्दी नशीन के सामने खड़ा था, बातें कर रहे थे हम खड़े दरबार के गद्दी नशीन, उसके पास माल इतना है, जैसे कहते हैं ना उसको पता नहीं है, उसके पास ओहदे, उसके पास दौलत,
اس کے پاس تاج، اس کے پاس تخت، اور میں اندر اندر کہہ رہا تھا، میں نے کہا اللہ والے آ تیرا کمال نہیں، او تیری نسلوں نے جو اعمال کیے تھے برکت والے، اللہ نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے تھے، اللہ سچا، رب کے وعدے سچے، اللہ تجھے پال کے دکھائے گا، خود تیری نسلوں کو بھی پال کے دکھائے گا، تو اللہ تیری نسلوں کو بھی پال کے دکھائے گا، رب سچا، رب کے وعدے سچے۔ چلو اس بات کو میں قرآن سے ایک بیان کرتا ہوں، قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو بنا دیا، سیدھا کر دیا، مرمت کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جناب والا آپ نے اس دیوار کا کیا تھا؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ تھا۔ کیا آیت ہے؟ کانا تحت ہو کنزل، اس کے نیچے خزانہ تھا اور بچے یتیم تھے۔ نیچے کیا تھا؟ اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ کیوں؟ ان کا ابا سورت کل ہو اللہ پڑھتا تھا۔ یہ کل ہو اللہ میرا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے ان کا ابا نیک تھا۔ وکانا ابوہما صالحا۔ اگلی بات اور حیران سن، ابن کثیر نے لکھا ہے وہ ابا نہیں جو ابا تھا جس کے یتیم بچے تھے، سات نسلوں پہلے کا ابا۔ لعنتیں بھی نسلوں میں ٹریول کرتی ہیں، رحمتیں بھی نسلوں میں ٹریول چلتی ہیں، برکت بھی چلتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں فلاں بندہ گیا برکتیں ساتھ لے گیا، فلاں بچہ کوئی ایسا آیا، یا میری شادی ہوئی میری بیوی ایسی بخت والی آئی، ایسے نصیب والی آئی۔ کہتی ہے کہ جب میں ابا کے گھر آئی تھی میرے باپ کو بخت لگ گیا تھا، جب میں شوہر کے گھر آئی تو میرے شوہر کو بخت لگ گیا۔ وہ ابا نہیں، کچھ سات نسلوں پہلے کا دادا، دادا 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 کے دادا، دادے کا دادا۔ اس نے نیکیاں کی تھیں، اس نے سورت کل ہو اللہ پڑھی تھی، اس نے حلال حرام کی پہچان کی تھی، جائز ناجائز کی، اس نے نیکیاں کی تھیں۔ میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں چونکہ وہ نیک تھا، ہم نیکوں کی نسلوں کو بیٹھ کے یوں کھلاتے ہیں، ان کے خزانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے جواہرات کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مالوں کی حفاظت کرنے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہم ان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ ان کے مال کے بارے میں فرمایا۔ ایمان ہے لیکن دنیا میں تو مال کی ضرورت ہے نا، اللہ نے اسباب کو دنیا کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان کے مال کی اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ یاد رکھیے گا، ابھی جو بیٹھ کے سورت کل ہو اللہ پڑھیں گے، یہ سورت کل ہو اللہ کی 11 جمعراتیں ہر سال ہوتی ہیں، اور دنیا پاگل دیوانی مجبور بے بس ہو کے آتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری نسلوں کے لیے بخت دولت عزت برکت صحت، اور ہمارے لیے بخت دولت عزت برکت صحت، اور ہمارے مسائل مشکلات پریشانیوں ناکامیوں کا حل، اور ہماری ذلتوں رسوائیوں کا حل، اور ہمارے قدم قدم پہ عزتیں کامیابیوں کے تاج، اور ہماری ہر بند گلیاں کھلی، اور ہماری بندشیں جادو اثرات ٹوٹے۔ یہ سب اس محفل اور اس مجمع کی برکت سے ہے، تبھی دنیا لوٹ لوٹ کے تسبیح خانے کا سال بھر انتظار کرتی ہے۔ نومبر کی ان چھوٹے دن اور بڑی راتوں میں ایک عمل شروع ہونے والا ہے، جس عمل کو کہتے ہیں کہ 40,000 دفعہ ہر محفل میں سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، جبکہ 40,000 سے کیا لاکھوں کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے، اور یوں برکتوں کے دروازے پھر دنیا کے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانیاں ایسے نہیں دور ہوتی ہیں جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے یہ مل جائے گا۔ بات پہ غور کیجئے، جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے یہ مل جائے گا، اس کو لاکھوں دفعہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ سوچیں تو صحیح۔ جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے یہ ملے گا، اس کے لاکھوں دفعہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ لاکھوں دفعہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ سوچیں تو صحیح۔ अभी इसी मंगल का जो हमारा टीवी प्रोग्राम होता है मंगल का, पूरी दुनिया में देखा जाता, उसमें एक खातून का सवाल था कि आपका एक अमल मैंने बड़ा आजमाया, मेरी औलाद ऊंच नीच करती थी, नाफरमान थी, बहुत परेशान करती थी। आपने फरमाया था कि दो तस्बीह पढ़ के हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें, उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाए वरना जरा दुर्रे से सीधा करें, उनसे अर्ज करें सरकार जरा इनको समझा दें, अगर ना समझें तो जरा आपका दुर्रा भी तो है ना, दुर्रा फारूकी मशहूर है, उनसे सीधा करें। कहा कि मैंने उनकी रूह को हदिया करा, इसी का नाम तो खत्मे खाजगान है हमारे, जो सिलसिला कादरिया में, नक्शबंदिया में, सोहरवर्दिया में, हमारे सिलसिला शाजरिया में, हमारा सिलसिला चिश्तिया में, ये खत्मे खाजगान इसी को तो कहते हैं खत्मे खाजगान। अभी हम करेंगे जिसको हम जिक्र खास भी कहते हैं, आपके हाथ में अभी जिक्र खास आएगा, नहीं आज नहीं आएगा क्योंकि आज हम सूरत इखलास पढ़ रहे हैं। तो ये यही तो है। कहने लगा मैंने बड़ी हैरत अंगेज तब्दीली महसूस की औलाद के अंदर। एक दफा पढ़ने से तो घर में तमंगरी के दरवाजे खुल जाए, और जब मजमा बैठ के पढ़े, दीवानों का मजमा, परदेशियों का मजमा, लाचारों का मजमा, बेबसों का मजमा, परेशान मजमा, सोचें उस परेशान लाचार परदेशों के मजमे में क्या बख्त के और दौलतों के दरवाजे और खजाने और झोलियां भर के जाएंगे, और क्या खुशकिस्मत होंगे जो 11 जुमेरातें पूरी करेंगे और 11वीं जुमेरात में हलवा रोटी का अमल होगा। याद है आपको कि आप घर से हलवा रोटी पका के ले आएंगे, कितने 11, ख्याल करना ज्यादा ना पका के ले आना, और वो बांटी जाएंगी, तकसीम की जाएंगी मजमे को, हर साल यही होता है, 11 से ज्यादा ना बना के लाना, हाँ बनाना शौक से, ये ना हो कि दो आने के नान ले हलवा ले, ना रोटी सोनी, उसमें हलवा, उसमें मेवे, ओ लाजवाब, क्यों? अल्लाह के नाम के लिए है कुर्बानी का बकरा सोना, क्यों? अल्लाह के लिए है। क्या बातें बताऊं आपको, क्या सुनाऊं और क्या बताऊं, मुझे तो आपकी अभी अमानतें देनी है। तावीज लिखा मैंने हजरत अली इब्न अबी तालिब के मजार पे, हजरत अली के घर पे तावीज लिखा, कूफा में नजफ पे तावीज लिखा, मस्जिद कूफा जहां हजरत अली की शहादत हुई वहां तावीज लिखा, हजरत कुमैल हजरत अली के खादिम थे वहां तावीज लिखा, मस्जिद हनाना कूफा वहां तावीज लिखा, हजरत कासिम बिन हजरत इमाम मूसा काजिम वहां तावीज लिखा, हजरत इमाम जैन बिन इमाम जैद बिन इमाम जैन अल आबिदीन वहां तावीज लिखा, हजरत अबू बकर बिन हजरत अली के बेटे वहां तावीज लिखा, हजरत नबी अयूब अलैहिस्सलाम वहां तावीज लिखा, नबी हजरत ज़िलकिफ़ल तावीज लिखा, इमाम हसन अस्करी वहां तावीज लिखा, हजरत इमाम अली नक्की वहां तावीज लिखा, हजरत सलमान फारसी मदाइन वहां तावीज लिखा, ये पहले हजरत सामरा में है, हजरत यूशा बिन नून के मजार पे बगदाद में तावीज लिखा, जुनेद बगदादी के मजार पे बगदाद में तावीज लिखा, हजरत हबीब अजमी के बगदाद पे तावीज लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मजार बगदाद पे तावीज लिखा, हजरत इमाम मूसा काजिम काजमैन बगदाद में तावीज लिखा, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल वहां उनके मजार पे तावीज लिखा, हजरत इमाम हुसैन करबला उनके मजार पे तावीज लिखा, हजरत औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफिर तैयार करबला उनके मजार पे तावीज लिखा, हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तस्बीह खाना और दरगाह वहां तावीज लिखा, और मजार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में वहां तावीज लिखा, हजरत ख्वाजा हसन बसरी के यहां गए हम बसरा में वहां तावीज लिखा, हजरत सहाबी रसूल अशरा मुबशरा हजरत जुबैर बिन अवाम के मजार पे वहां तावीज लिखा, और सहाबी रसूल अशरा मुबशरा हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला, तलहा बिन, उन्होंने बैदुल्ला फिर भी नहीं लिखा, कहा तो बैदुल्ला लिखना, नहीं लिखा, वहां तावीज लिखा, और हजरत मारूफ करखी के मजार पे वहां तावीज लिखा। अभी तो ये तावीज इसका पानी आपकी अमानत है, मैं पूछ रहा हूं आपको कैसे दूं, पूरी दुनिया मांग रही है। अच्छा, कुछ तस्बियां मैं ले गया था, कुछ मैं तस्बियां ले गया था, तस्बियां ले गया, उन तस्बियों का अब क्या करूं मैं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, पैसा नहीं छल्ले हार गिना, पैसा नहीं पल्ले हार गिना के छल्ले, मैं कैसे वो तस्बीह दूं आपको, क्या करूं? अब आप कहते हैं कि उसको खोल लें, एक एक दाना हर किसी को दे दें, یا دو دو دانے دے دیں یا تین تین دانے دے دیں یا ایک ایک دانہ دے دیں, لوگ اپنی ان تسبیحوں کو اپنی تسبیحوں میں ڈال دیں گے, اپنے گلے میں ڈال دیں گے, اپنے کہیں رکھ لیں گے یا تسبیح میں ڈال دیں گے. احباب یہ کہتے ہیں میں کیا کروں, کتنا کروں, کیسے کروں, کس طرح کروں, اب مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور یہ 125 سے زیادہ, 26 سے زیادہ, 27 سے زیادہ روحانی اور مقامات ہیں اور تاریخی مقامات جہاں تسبیحوں کے لیے دعا کی گئی, بہت سفر ہوئے. یعنی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میرے موبائل پہ, ہمارے موبائل پہ جو قدم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, سٹیپس, قدم کو کہتے ہیں سٹیپس. وہ بتا رہے تھے کہ ہم روزانہ مجموعی طور پہ 10 کلومیٹر چلے ہیں, کسی دن 17 کلومیٹر, کسی دن 13 کلومیٹر, کسی دن 9 کلومیٹر, 11 کلومیٹر, 12 کلومیٹر, گلیوں میں تلاش کر کر کے ان ہستیوں کو تلاش کر 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 کر, جگہ جگہ تسبیحیں ساتھ ہیں, جگہ جگہ تعویذ ساتھ ہیں, جگہ جگہ مرادیں ساتھ ہیں, جگہ جگہ برکتیں ساتھ ہیں. میں نے تو آپ کی امانتیں لوٹانی ہیں, تعویذ کا پانی ایک قطرہ بھی اس کو بڑھاتے جائیں پھر اس کی برکتیں دیکھیں. میں نے ہر جگہ تعویذ علیحدہ لکھا ہے اور وہ پوسٹوں میں تعویذ آ رہے ہیں, ہماری پوسٹیں جو آ رہی ہیں, ہر جگہ تسبیحیں ساتھ تھیں, دم کرتا رہا ساتھ چلتی رہیں, دم کرتا رہا ساتھ چلتی رہیں. میں کہاں سے وہ آپ کی امانتیں پوری کروں؟ میں نے آپ کی امانتیں لوٹانی ہیں, میں نے آپ کی امانتیں لوٹانی ہیں. وہ امانتیں مجھ سے کیسے لیں گے؟ میرا ساتھ دیں, میرے اوپر بوجھ ہے, میرے اوپر ذمہ داری ہے, میرے اوپر بوجھ ہے. میں آپ کا ارادہ کر کے لایا تھا, میں اپنے ارادے سے بدلنے نہیں چاہتا. میں سارے تعویذ کا پانی اپنے پاس رکھ لوں, تعویذ کا پانی اپنے پاس رکھ لوں, لیکن نہیں, آپ کی امانت ہے, آپ کی امانت ہے. میں آپ کو امانت دینا چاہتا ہوں, لوٹانا چاہتا ہوں, اس کا مجھے آپ مشورہ دیں. وہ امانت جلد سے جلد میں دینا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ 11 روزوں کا عمل جو ہے, 11 روزوں کا عمل ختم ہو گیا ہے, 11 روزے رکھے. اور یا مسبب الاسباب, سبب لی, کتنی دفعہ پڑھا؟ 1100 دفعہ پڑھا. اس کا آج دعا بھی ہے, اس کی دعا بھی ہے, اور اس کے لیے آپ حسب پہ توفیق ہدیہ بھی دے دیں, مجھے نہیں, کسی ایسے غریب کو جو سوال نہیں کر سکتا. اگر رشتہ دار ہو تو اچھی بات ہے, چاہے رشتہ دار نے ساری عمر گندہ کیا ہو, ذلیل کیا ہو, رسوا کیا ہو. میرا اللہ کہتا ہے وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, پہلی لسٹ میں رشتہ دار ہے, کچھ صدقہ حسب پہ توفیق ہدیہ بھی کر دیں. اور اس کی آج اختتامی دعا بھی ہے, اس کی اختتامی دعا بھی ہے. اور ابھی بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھتے ہیں, قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے بیعت والے حضرات جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے, جو اور بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسول, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے, بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں, تیری ہر نافرمانی سے, عہد کیا تیرا حکم تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما, میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ, یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات کا اہتمام کرتے رہیں, 3 کلمہ, درود پاک, استغفار, قرآن کی تلاوت, نماز, اور حلال حرام, جائز ناجائز پہ نظر رکھتے رہیں. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے, گاڑی میں, گھر میں, جمعرات کی حاضری, درس, یہ درس رابطہ ہے. میں بھی رابطے کا محتاج ہوں, یاد دہانی کا محتاج ہوں, آپ بھی یاد دہانی کے محتاج ہیں. رابطے میں جو شخص رہتا ہے وہ سب سے زیادہ نفع پاتا ہے. اور میرا ایک چندہ ہے, اتنا زیادہ نظام ہے, میرا ایک چندہ ہے, اس چندے کا فکر کریں. وہ 2 رکعت نماز نفل حاجت ہیں, اور حامیم لا یونسارون 313 بار ہے. یا حفیظ و یا سلام, اے اللہ تسبیح خانی کی ضرورتیں
غیب سے پوری فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے قیامت تک بچا، اور میرے اور میری نسلوں کو قیامت تک کے لیے خادم بنا، اہل لوگوں کو متوجہ فرما۔ میرے اس چندے کا بہت فکر کرنا ہے آپ نے۔ ابھی عشاء کی جماعت یہاں ہوگی، دوسری نماز نیچے حسینی ہال میں ہوگی۔ مردوں اور عورتوں کی جمعہ تسبیح خانے میں ایک بجے ہوتا ہے۔ خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں وقت گزاریں، بوڑھے حضرات زندگیاں وقف کریں۔ خواتین ہر حال میں درس اور دم میں شامل ہو سکتی ہیں۔ گھریلو الجھنوں کے خاتمے کے لیے تسبیح خانہ لاہور میں 3 دن گزاریں۔ ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں۔ ہر ماہ ایک کاپی لیں، اپنے طبی روحانی تجربات، مشاہدات، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی تفصیلی واقعات کے ساتھ ضرور لکھیں۔ ہر مہینے کاپی پہنچائیں، ہر مہینے واقعات ضرور لکھیں۔ وضو کے لیے ابھی ہم کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، تو اپنے جیبوں اور موبائل کی حفاظت کریں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارے باہر گلیوں میں، چوک میں پرس اور موبائل چھیننے کے واقعات درس کے بعد جب مجمع نکلتا ہے بڑھ رہے ہیں، ذمہ دار اس کا فکر کریں۔ پرس اور موبائل چھیننے کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ذمہ دار اس کا فکر کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور جب بھی تسبیح خانہ، حویلی، حجویری مال میں آئیں، قیام کے لیے بستر ہمراہ لائیں۔ 3 تعویذات کا مجموعہ لکھنے کے لیے دیا ہے، مخلصین وہ لکھتے رہیں۔ اس کا نمونہ فیس بک، واٹس اپ پر موجود ہے، لکھتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ ابتری کے صفحہ نمبر 65 کو روزانہ پڑھیں، گھریلو الجنوں کا آخری حل آپ کو اچانک ملے گا۔ دوسرے شہروں سے آنے والوں کا اصرار تھا، ان کو اجازت دے دی کہ وہ بسیں بھر کے لا سکتے ہیں۔ دوسرے شہروں کا اصرار تھا، اجازت دے دی۔ اور مرشد سے اپنا تعلق مختلف عنوانات سے جوڑ کر لوگوں کو غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا کیا جاتا ہے، بے بنیاد باتوں پر توجہ نہ کریں۔ اسی اتوار اسم اعظم کا دم ہے، فجر کی نماز کے بعد شفائیہ دعا ہے، اور پھر حلقہ کشف المحجوب ہے، اور روحانی دم کے خصوصی پیکج ہیں، اس میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ 20 جنوری کو جمعرات کو تسبیح خانے میں سورت اخلاص کا آخری عمل ہوگا، 20 جنوری کو۔ اور اس جنوری سے قبل ہی میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ سامنے بلڈنگ ہے آل عباس مکمل ہو رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں، اور اس میں جا کے خدمت بھی کریں۔ کوئی روڑا اٹھا رہا، کوئی سیمنٹ اٹھا رہا، کوئی ریت اٹھا رہا، کوئی جھاڑو دے رہا، کوئی ویلڈ کر رہا، کوئی بجلی کے بلب لگا رہا، کوئی پیچ کس رہا، کوئی کیا خدمت سعادت۔ اس میں خدمت سعادت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ تو 20 جنوری سے پہلے پہلے یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے، کیونکہ اکثر خواتین بیچاریاں گلیوں میں بیٹھتی ہیں، اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ مردوں کو تو گلیوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اچھا پھر بھی نہیں لگتا، لیکن خواتین کو تو ویسے اچھا نہیں لگتا۔ تو اس کے لیے آپ سے عرض ہے کہ بہت خدمت محنت بڑھا دیں، اور انشاءاللہ 20 جنوری کو حلوہ روٹی کا عمل ہوگا، 20 جنوری کو حلوہ روٹی کا عمل ہوگا، اور اس میں شرکت کریں، اور دعا بھی ہوگی۔ اور حجویری محل میں پودے لگانے اور بچانے کی مہم احساس کو نہ بھولیں، اور حجویری محل میں انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے 20 جنوری کو تسبیح خانے ہی میں روٹی حلوہ کا عمل ہوگا، اور اختتامی دعا ہوگی۔ پارکنگ میں تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ یہاں گلیاں بند نہ کریں اور باہر لے جائیں تاکہ راستے بند نہ ہوں۔ اور یہ پارکنگ کی رقم ہمیں نہیں جاتی، وہ پارکنگ والے خود لیتے ہیں۔ پلمبر، بجلی، لکڑی، ویلڈنگ، مختلف شعبوں والے حضرات یہاں تھوڑی تھوڑی خدمت میں آتے رہا کریں۔ کبھی بلب خراب، کبھی ٹونٹی خراب، اتنا بڑا مجمع آتا ہے، چیزیں مرمت ہوتی رہتی ہیں، تو اپنی خدمتیں دیتے رہا کریں۔ اپنی واٹس اپ، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کو پھیلانے کے لیے مجھے دیوانے مستانے چاہیے، جن کے دل کی دنیا ہو، کہ جو دن رات موبائل پہ، واٹس اپ میں اپکری کی پوسٹوں کو پھیلائیں۔ کوئی بھی پریشان اچانک موبائل کھولے، اس کو کوئی پوسٹ مل جائے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے، تو سمجھ لیں ہمارا گھر آباد اور شاد ہو گیا۔ اس محنت کو، اس کوشش کو نہ بھولیں۔ روحانی حفاظتی ہنی مون، نئے شادی شدہ جوڑے تسبیح خانے میں 21 جمعراتوں کی حاضری دیں، ہمیشہ کے لیے بخت، دولت، اولاد کے فیصلے اللہ سے کرائیں۔ 6 جنوری کو کھجور کی گھٹلی کا مبارک عمل ہوگا تسبیح خانے میں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخون ہمراہ لائیں۔ 6 جنوری تسبیح خانے بروز جمعرات کو۔
और नाखून का अमल होगा, और 3 फरवरी को साढ़सती काले जादू का सिफली अमल साढ़सती के तोड़ का अमल होगा। 3 फरवरी बरोज जुमेरात तस्बीह खाने में पहली दफा हवेली में इंशाल्लाह 17 फरवरी से 20 फरवरी को जो है रूहानी चिल्ला होगा हवेली में, और वहां 17 फरवरी बरोज जुमेरात का दर्श भी हवेली में होगा। अभी से वहां ट्रांसपोर्ट की तरतीब बनाएं, अहबाब के लाने ले जाने में हवेली के लिए अभी से ट्रांसपोर्ट की तरतीब बनाएं कि अभी से वहां अहबाब कैसे ट्रेनों में आएंगे या गाड़ियों में जाएंगे, अभी से उसका फिक्र करें। सखर का दर्श इंशाल्लाह 25 फरवरी को होगा जुमे के दिन, और 625 मरतबा बिस्मिल्लाह के तावीज का सालाना अमल होता है। जिसके जेब में ये 625 मरतबा का तावीज आ जाता है वो दुनिया का आखिरी खुशकिस्मत होता है, ये भी हर साल होता है। और इस साल इंशाल्लाह 23 दिसंबर बरोज जुमेरात हो रहा, 23 दिसंबर बरोज जुमेरात खवातीन के तस्बीह खाने के दरवाजे के साथ 2 छोटी-छोटी जगह हैं। चंदे और माल से नहीं, आमाल और दुआ से अल्लाह से दिलवाएं। तस्बीह खाना अल्लाह के खजानों से लेना सिखाता है, और 11 रोजों का इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपनी और अपनी नस्लों की मुरादें पूरी करना चाहते हैं, पूरी फैमिली 21 जुमेरातों की हाजिरी की मन्नत माने कि हम तस्बीह खाना लाहौर में 21 जुमेरातें देंगे, मजबूरन कोई जुमेरात चूक जाए तो बाद में भी पूरी कर लें, पूरी फैमिली आए वरना घर के जितने ज्यादा अफराद आए, 21 जुमेरातों की हाजिरी की मन्नत माने। बहुत लोगों के मसाइल हल हुए हैं और हो रहे हैं। आप इराक की जियारत के लिए जाना चाहें तो मुर्शिद की सरपरस्ती के बगैर ना जाएं। अब तक हमसे 1100 से ज्यादा बंदे हो गए कि हमें इराक की जियारत के लिए ले जाएं, और हमने तो सिर्फ चुनने हैं कि 50-60-70 आदमी, कारोबार तो है नहीं, वो भी जब वक्त मिला तो। जो भी जाए अपनी मर्जी से ना जाए, अगर कोई मुर्शिद की बात मानने वाले हैं वो फकीर की निगरानी में जाए वहां, ताकि वो रूहानी आमाल मुर्शिद की निगरानी में करे और अल्लाह उसकी मुरादें पूरी करे, रूहानी आमाल मुर्शिद की निगरानी में करे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को हमेशा के लिए कबूल फरमाए। गोशे दरूद व सलाम कराची का दर्श इंशाल्लाह 9 जनवरी को होगा। ये कुछ ऐलानात थे, अब हम सूरत इखलास बैठ के पढ़ेंगे। हाँ, आज निकाह भी है, लोग यहाँ निकाह के लिए आते हैं और रूहानी बरकतें साथ ले जाते हैं, और हमारे निकाह की कोई फीस वगैरह नहीं होती। आज निकाह भी है, और अब सूरत इखलास का अमल होगा, और उसके बाद सुल्तानुल अज़कार हमारा सिलसिला कादरी हजवेरी है, सुल्तानुल अज़कार का अमल होगा, सूरत इखलास का अमल। अब डूब के सूरत इखलास पढ़नी है, बहुत डूब के, जितना डूब के पढ़ेंगे, जितनी तवज्जो से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से, सर झुका के, गिड़गिड़ा के, चंद लम्हों के लिए पढ़ना है, पूरी दुनिया में चंद लम्हों के लिए पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपके पास सूरत इखलास का नक्श होगा, इस पे फूंक मारनी है। मैं भी फूंक मारता रहता हूं, आपने भी मारनी है। अवल आखिर दरूद पाक 3 बार पढ़ें और सूरत इखलास डूब के पढ़ें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जिक्र है, फिर मुराकबा है, फिर दुआ है। अल्लाहुम्मा अब बैठ के पूरे जज्बे के साथ, दिल की कैफियतों, दिल की गहराइयों के साथ सुल्तान और अस्कार करना है, नफी अस्बात, पूरा जज्बा, दिल की कैफियतें। आपने तावीज पे फूंक मार लिया ना, इंशाल्लाह मैंने भी मार दी है। आवाज आना जरूरी नहीं, स्पीकर की आवाज आना जरूरी नहीं, अल्लाह वालों। तो पूरे दिल की कैफियतों के साथ, पूरे दर्द के साथ जिक्र करना है, फिर मुराकबा है, फिर दुआ है इंशाल्लाह, और फिर नमाज खड़ी होगी। लाइटें बंद कर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, لا اله الا الله 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 لا اله الا
ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھ رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الا اللہ
الا اللہ
الا اللہ الا اللہ
الا اللہ الا اللہ
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولهم فقير ہیں مانگتے ہیں پیاسے ہیں بھکاری ہیں بھوکے ہیں ننگے ہیں پردیسی ہیں در در کے مارے ہوئے در در کے ہارے ہوئے سخیا کا سارے جمع ہوئے فقیر بھی جمع ہوئے منگتے بھی جمع ہوئے پردیسی بھی جمع ہوئے بیمار بھی جمع ہوئے مخلوق الحال بھی جمع ہوئے مقروض بھی جمع ہوئے لولے لنگڑے سارے جمع ہیں اندھے کانے بہرے جمع ہیں اور تیری فریاد کر رہے ہیں آس کر کے تیرے پاس سورۃ اخلاص کا تحفہ لا کے تیرے پاس تیرے نیک تیرے بندوں کی دعائیں لا کے تیرے پاس اعمال کا ہدیہ لا کے خالی ہار نہیں آج میرا مولا آج ہمارے پاس سورۃ اخلاص کا ہدیہ ہے اے سخیا کا ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے تو گھروں کو مالا مال کر دیتا ہے آج تو تیری مہربانی سے ہم نے لاکھوں بار سورۃ اخلاص پڑھی ہے اے سخیا کا اس تحفے کو قبول فرما اس تحفے کو قبول فرما اس تحفے کو قبول فرما ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے منہ پہ نہ مار دے اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما، اپنی عطا کو متوجہ فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا، اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دے، جو بے در ہیں انہیں در دے دے، جو بے سہارا ہے انہیں سہارا دے دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، مولا در در گئے ہیں بیکار ہو گئے ہیں، در در گئے ہیں بے آسرا ہو گئے ہیں، اور در در گئے ہیں ہمارا کچھ نہیں بچا، اب خالی نہ مراد ہو کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں نہ مراد نہیں لوٹائے گا، تو ہمیں مرادیں دے کر لوٹائے گا، ہماری آسیں امیدیں پوری کر کے لوٹائے گا، ہماری جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ اللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کے کسی سخی کے دروازے پہ جائے اور اس کی منتیں کرے اور اس کی زاریاں کرے اور اس کے سامنے التماسیں اور فریادیں کرے، اے مولا میرا مولا سخی کی دے دیتا ہے، اور تو سخیوں کا سخی، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو سرداروں کا سردار ہے، تو آقاؤں کا آقا ہے، تو خاندان خان ہے، تو میرا مولا لجپال ہے اور تو غریب ہے، تیرے پاس نہ جائیں کس کے پاس جائیں، تیرے پاس نہ آئیں کس کے پاس آئیں، ابھی حضرت علی تجھ سے مولا فریادیں کر رہے تھے، تیری منتیں کر رہے تھے، اے سخی آقا ان بولوں کا صدقہ، ان لفظوں کا صدقہ، ان حرفوں کا صدقہ، جتنا مجمع آیا ان کی حاضری قبول فرما، ان کی حاضری قبول فرما، ان کی حاضری قبول فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی ناکامیاں ختم فرما، ان کی ذلتیں ختم فرما، اللہ ان کو عزتوں کے تاج پہنا، ان کے قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرما، ہر بند دیواریں ختم کر دے، بند گلیاں ختم کر دے، راستوں کی دیواریں ختم کر دے، اے اللہ بندشیں توڑ دے، جادو جنات اثرات ختم کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، مشکلوں کو حل فرما، ناکامیوں کو ختم فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اللہ آس امید کر کے یہ سارے تیری بندیاں بندے پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، اے میرا مولا ہماری آس امید مایوس نہ کر ہمیں، اے مولا ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ، ہمارے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہمارے کام نہ دیکھ، ہمارے صبح شام نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنے ناموں کی برکتوں کو دیکھ، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، جو اب مانگی قبول فرما، جو آئندہ مانگیں گے قبول فرما، جو پھر مانگیں گے قبول فرما، جو کبھی مانگی قبول فرما، اور کچھ لوگوں نے ہمارے حق میں مانگی قبول فرما، ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرما، ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرما، پوری امت کو اس کی برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری چھاونیوں کو، ہمارے ایوانوں کو، ہماری کچہریوں کو، ہمارے بازاروں کو، ہمارے بادشاہوں کو، ہمارے امیروں غریبوں فقیروں مشیروں وزیروں کو، اللہ ان کی برکتیں عطا فرما، ان کی برکتیں عطا فرما، اور اس کی خیریں عطا فرما، اللہ خوبصورت جمعرات ہے، خوبصورت رات ہے، پردیشیوں کا مجمع ہے، بھکاریوں کا مجمع ہے، مولا ان کے ایک ایک آمین کو ایسا قبول فرما کہ اس پہ قبولیت کی مہر لگا، محبوبیت کی مہر لگا، مقبولیت کی مہر لگا، اللہ ان کی آمین کو قبول فرما، اپنی شان کے مطابق قبول فرما، ہمارا آنا قبول، ہمارا بیٹھنا قبول، ہمارا پڑھنا قبول، ہماری خلاص قبول، ہماری قل ہو اللہ احد قبول، ہماری اللہ الصمد قبول، ہمارا لم یلد قبول، ہمارا ولم یولد قبول، ہمارا مولا کفواً احد قبول، قبول قبول فرما، مردود نہ فرما، نسلوں کے لیے خیریں دے، برکتیں دے، رحمتیں دے، راحتیں دے، عافیتیں دے، عطائیں دے، شفقتیں دے، درگزر دے، درگزر دے، اپنی پکڑ سے بچا، ان بخش ربک لشدید سے بچا، رحم فرما، رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما، وباؤں کو ختم فرما، بلاؤں کو ختم فرما، ہمارے بادشاہوں کی مدد فرما، ہماری چھاونیوں کی مدد فرما، ایوانوں کچہریوں کی مدد فرما، کفایت کفالت حفاظت فرما،
بس بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کے خزانے عطا فرما، دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما، دنیا آخرت کی رحمتیں عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، جو آمین کہنے والے ہیں انہیں عطا فرما، سننے والے انہیں عطا فرما، اور پوری دنیا میں جہاں بیٹھے انہیں عطا فرما۔ اللہ تسبیح خانی کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، میری نسلوں کو مجھے اس کا خادم بنا، اور کبھی فتنوں سے بچا، فتنوں سے بچا، پورے عالم میں پھیلا، پورے عالم کی خیر عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔